वनजरुहुम फी तुगयानिहिम या महून। फिर हम उनको उनकी सरकशियों में बहकने के लिए छोड़ देते हैं। ये थी वजह कि जब लोगों के दिल में हिदायत की तलब कम हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है, तो फिर अल्लाह ताला खुद ब खुद एक रुकावट बनते हैं। आज के सबक में, पूरे के पूरे सबक में आपको बहुत सारे शोशों का पता चलेगा, और बहुत ही महरूम है वो लोग जो आज के सबक से महरूम है। पारे का पहला सबक असल में पूरे पारे की थीम होती है, किस तरह लोग हक के रास्ता छोड़कर मन के रास्ते और दौलत के रास्ते और दुनियादारियों के रास्तों पे खुशी खुशी चलते हैं, लेकिन अल्लाह के रास्ते मुश्किल लगते हैं। आइए आयतों को लेके अब साथ साथ चलेंगे। बहुत सा करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे वक्त में बरकत डाले। आयत नंबर 111, वलौ अन्ना नज़लना इलैहिमुल मलाइका, और अगर हम इनकी तरफ फरिश्तों को उतार दें। सवाल पैदा होता है कि इनकी तरफ, आप सोचिए अपने जहन में, उनकी तरफ जो पहली दफा ईमान नहीं लाए। आयत 110 इसके साथ ही जोड़ लें, जिनको हिदायत की दावत दी, जिनको पता चल गया हिदायत कैसा सौदा है, जिनको पता चल गया कि इस किताब के अंदर दुनिया आखरत की सारी बरकतें हैं, लेकिन जब एक दफा किसी मस्ती में आकर वो इस चीज को नहीं मानते, तो याद रखो, वाले वन्ना नज़लना इलैहिमुल मलाइका, और अगर हम इन पर फरिश्ते ही उतार दें। कौन से फरिश्ते? जिनका ये मुतालबा करते, मौता, या फिर मुर्दे भी इनसे बातें कर लें। ये कौन से मुर्दे? इनके अबाओ अजदाद, कब्रों में गए हुए इनके वो बाप दादे जिन्होंने जिंदगी भर अल्लाह के नबी को, अल्लाह के रास्ते को नहीं माना, वो आकर इनको खबरें भी दे देना कि हाँ भाई मान जाओ, क्योंकि कब्र में पहला सवाल ही अल्लाह, और दूसरा सवाल उसके रसूल, और तीसरा सवाल उसके दीन के बारे में हुआ था। मान जाओ, मन रब्बु का मर रसूल का माँ के मा दीनु का, खबरें इनको मुर्दे दे दें। वहशरना अलैहिम कुल्ला शयइन कुबुला, और तमाम चीजें इनके सामने ला कर पेश भी कर दी जाएं, यानी सब, यानी इम्पॉसिबल बातें होने लगे। जिन बातों के ये मुतालबे करते थे, ये वही मुतालबे हैं जो गाहे बगाहे नबी सल्लम से भी और बाकी रसूलों से भी लोगों ने किए कि अच्छा जी, फरिश्ते आएंगे तो मानेंगे, हम आपको नहीं मानते, कैसे मान जाए। अच्छा, फरिश्ता तन्हाई में गारे हिरा में जो आता है, तो वो सबके सामने आके आपको नबी कह दे तो मानेंगे। ये सारे मुतालबे इन लोगों के थे। अल्लाह ताला कहते हैं, अगर इनके सारे मुतालबे भी मान लिए जाएं, हत्ता कि कब्रों से मुर्दे भी उठ के बातें करने लग जाएं और हर मुख्तलिफ चीज इनके सामने ला के रख दी जाए, मा कानुलियो मिनू भी, मा कानुलियो मिनू, तब भी ये ईमान लाने वाले ना थे। हाँ, मगर इल्ला यशा अल्लाह, मगर ये कि अल्लाह ही चाहे। क्या पता चला कि अल्लाह चाहता है, लेकिन जब एक बंदा अपनी चाहत को बदल लेता है, तो फिर अल्लाह ताला की चाहत भी बदल जाती है। अल्लाह ताला की चाहत बंदे की चाहत से मशरूत है, शर्त है, कंडीशनल है। दो चाहतें मिलती हैं ना, तो काम होता है। आप इसको यूं समझिए कि जैसे माचिस की डिबिया और उसके अंदर की स्टिक, आपके हाथ में मसाला लगी हुई स्टिक हो तब भी आग नहीं जलेगी, और खाली डिबिया हो तब भी आग नहीं जलेगी, जब तक मैच बॉक्स के ऊपर उस तीली को रगड़ नहीं देंगे। ये दो चीजें मिलेंगी ना तो आग लगती है। तकदीर भी यही है। अल्लाह का इरादा हो, बंदा नियत ना करे, भाग जाओ, छुट्टी करो, तुम इस काबिल ही नहीं हो। दूसरी सूरत, बंदा नियत कर ले किसी काम के करने की, अल्लाह ने नहीं अभी उसके नसीब में किया, तो भी काम नहीं होता। तकदीर क्या है? लिख लीजिए दो जुमलों में इसकी तारीफ, के इरादे का मिलना। ये बहुत सारे सवालों का एक जवाब है, खामोश सा, जो लोग कहते हैं कि अच्छा जी, अगर अल्लाह चाहेगा तो हम आ जाएंगे, अल्लाह चाहेगा तो ये करेंगे। और जैसे एक मौके पे हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को अल्लाह के नबी ने कहा कि रात को तहज्जुद के लिए उठे थे, कहा अल्लाह चाहता तो उठा देता। नबी सल्लम को गुस्सा आ गया, आपने कहा कि एक पाँव उठाओ, पाँव उठा लिया, कहा दूसरा भी उठाओ, नहीं उठा सके, ये है तकदीर। एक पांव उठता है ना तो उसके बाद दूसरा उठता है। बंदे और रब की चाहत मिलती है तो कोई काम होता है। हिदायत का फैसला तो जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला है। कोई शायद इसकी तड़प महसूस करे कि ना करे, लेकिन हकीकत यह है कि आपकी जिंदगी में जितने भी आज तक फैसले हुए, आपके स्कूल में गई, चले कुछ फैसले तो अल्लाह के थे ना, जाहिर भी और अंदर से छुपे हुए भी, उसको पीछे कर दें। जो शौरी फैसले किए गए आपकी जिंदगी में, स्कूल में कब दाखिल किया जाए, इंग्लिश मीडियम में हो कि उर्दू में हो, फिर होते होते फैसले हर दिन होते हैं, क्या खाएं क्या पहनें, किधर से जाएं क्या करें, और इसी तरह फिर शादी ब्याह के फैसले हो जाते हैं, फिर बच्चों के लोग सोचते हैं कि हम खुद फैसले कर रहे हैं कि बच्चे पैदा करें कि ना करें। इन सब फैसलों में सबसे बड़ा फैसला हिदायत का फैसला है। किसी की शादी होती है तो हो, नहीं होती तो ना हो, कोई बड़ा फैसला नहीं है। किसी की जन्नत जहन्नम का इसके ऊपर कोई इन्हिसार नहीं है। लेकिन कोई हिदायत पे आता है कि नहीं आता, ये बहुत बड़ा फैसला है, ये दूरस्थ है। देखिए आप दुनिया में ना पढ़ते, हम जाहिल रह गए, हमें इंग्लिश नहीं आई, चल गया ना काम, चल जाएगा, और कुछ साल जी के दुनिया से चले जाएंगे। शादी हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई, खत्म हो गई कहानी, 10 20 25 50 साल में दुनिया से चले जाएगा बंदा। बच्चे हुए कि ना हुए, आपने चाहे कि ना चाहे, आपकी सिर्फ बेटियां हुई, आपके सिर्फ बेटे हुए, सारे फैसले पे आना और किसी का हिदायत को देख कर ठुकरा देना, ये फैसला कब्र के बाद तक, हशर और जन्नत और जहन्नम तक साथ चलता है। और ये फैसला भी अल्लाह ने बंदे के इख्तियार में रखा है। यहां जो थीम है कि तुम चाहोगे तो अल्लाह तुम्हारे रास्तों में फूल बरसाएगा, तुम चाहोगे तो मछलियों को लगाएगा, तुम चाहोगे तो फरिश्तों के पर बिछाएगा, तुम चाहोगे तो समंदरों की मछलियां तुम्हारे लिए दुआएं करेंगी, और अगर तुम नहीं चाहोगे तो गेट आउट, भाग जाओ, चले जाओ, फालतू नहीं है, फारिग नहीं है, और भी बहुत लोग हैं। तुम नहीं आओगे तो क्या होगा कि अल्लाह ताला की कायनात में कोई कमी हो जाएगी, तुम जाहिल रहोगे, वलाकिन अक्सर हम यजहलून, लेकिन अक्सर लोग जाहिलियत की बातें करते हैं। कितनी कसरत है, उनका मिजाज नहीं दिखता। अक्सर परेशान है शादियों पे, अक्सर परेशान है रिश्तों पे, अक्सर परेशान है जॉब के मिलने ना मिलने पे, अक्सर घर की कमी बेशी पे परेशान है, घर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, लेकिन बहुत थोड़े परेशान है इस बात पे कि हिदायत का रास्ता मिला कि नहीं मिला, नंबर एक, लेकिन मिला तो छिन गया। देखिए जो शख्स हिदायत पे नहीं चला होता ना, काबिले रहम है, लेकिन जो हिदायत पे चलने के बावजूद दुनिया की छोटी छोटी चीजों पे पड़ के ऐसी चीजों में पहुंच जाता है ना कि जो इंसान की आखिरत को बिगाड़ दें, वो सद अफसोस, 100 दफा उसके घर अफसोस करने जाए ना तो थोड़ा है। कोई फौत होता है ना आपके प्यारों में किसी का, तो आप 1 दफा 3 दिन के अंदर 1 या 2 दफा चले जाएं, कोई बड़ी बात नहीं, 3 दिन के बाद बात पूरी हो गई। लेकिन अगर कोई 2 दफा उसके घर अफसोस के लिए जाए, ताजियत के लिए जाए, आंसू बहाए, तड़पे, क्योंकि अल्लाह ताला कहता है कि जब तुम नहीं जानते तो हम भी नहीं जाते। इस आयत को पढ़ने से ही आपका दिल हिल गया होगा कि आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। मुतालबे अल्लाह के नबी से करते थे, कहते थे कि कोई हो तो मामला बने। यहां चंद मुश्किल लफ्ज उनको देख लीजिएगा इस आयत के। कुबुला, कुबुल का लफ्ज काफ बालाम से, इसकी मुख्तलिफ तफसीरें आती हैं। अगर आप इसको आम मानी में देखें तो कुबूला का मानी क्या है, किसी चीज का बिल्कुल सामने होना। जैसे अगर आप देखिए कि इस वक्त आप सारी सामने बैठे हैं ना मेरे, लेकिन ये फ्रंट रो में जो बीच के ये जो 2 3 लोग हैं जो मेरे टेबल के आगे हैं, ये मेरे कुबूल हैं, आप भी हैं, साइडों वाले हैं, लेकिन जो ये सामने है ना, इसको कुबूल कहेंगे, बिल्कुल आमने सामने किसी चीज का होना। ठीक है, कहते हैं कि ये काबिल की जमा है। काबिल कौन है? हम तो उर्दू में कहते हैं ना फुलां बड़ा काबिल है, उसको भी समझ लें आज, वो काबिल कैसे होता है कि किसी के भी मुकाबले, दुनिया के किसी मैदान में भी आप भेज दें, ये वहां जाकर कुछ करके आएगा। ठीक है, फिर मुकाबिल लफ्ज भी इसी से है, किबला भी इसी से है। ठीक है, तो काबिल की जमा कहते हैं कबूला, तो मतलब क्या है कि इनके मुकाबिल ले आए हम इन चीजों को। ठीक है। दूसरी एक इसकी तफसीर क्या है कि ये कबील की जमा है, कबील। और कबील क्या है, कबीला। मुराद क्या है कि कबीलों के कबीले भी इनके सामने आ जाएं तो नहीं मानेंगे, कसरत का मानी है। यानी जितना ज्यादा इनको बुला लो, एक नहीं 100 बंदे भी जाके इनको कह दें कि लोगों ये नबी सच्चा है, ये किताब सच्ची है, ये कुरान बरहक है, ये रास्ता बड़ा खूबसूरत है, तुम आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लेकिन ये आना पसंद नहीं करते। लोग जहालत बरतते हैं। जहालत पे भी थोड़ी सी बात करेंगे। जहालत कैसी होती है? अमूमन जहालत 3 किस्म की होती है। अगर आप इसका मादा देखें ना, तो जहल है, जीम हाँ लाम। डिक्शनरी में जहालत का लफ्ज मा कबलल इस्लाम, समझ लें इस बात को, फिर लिखिएगा। देखिए जहालत कैसी है, 2 तरह की होती है। एक है टाइम इरा, यानी जैसे ये 2014 चल रहा है ना, या जैसे आज 14, 35, 6 चल रहा है ना, जहालत कौन सा टाइम इरा था, इस्लाम से पहले का। मा कबलल इस्लाम फहुअल जहाला, ठीक है। कुरान में ये मानी आएगा, आगे भी पढ़ेंगे, और आप अफहुक्मल जाहिलियत या भून सुरे मायदा में भी पढ़ चुके हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। तो इस्लाम के आने से पहले के सारे दौर को जाहिलियत का दौर कहते हैं। दूसरा जहालत का दौर कौन सा होता है, किसी इंसान का वक्त। मसलन हम बचपन से मुसलमान हैं, लेकिन बहुत सारे काम जहालत के करते थे, लेकिन अब कुरान के साथ एक शौरी ताल्लुक जुड़ा, अल्लाह ताला ने जहालत कम कर दी। खत्म तो पूरी नहीं हुई, लेकिन खत्म हो रही है। तो लिहाजा जहालत जो होती है वो इंसान के जाहिर के साथ भी है, हर बंदे की भी जहालत होती है, एक अमूमी जहालत भी होती है। लेकिन यहाँ जो यजहलून है ना, इसको हम 3 मुख्तलिफ किस्म में देखेंगे। सबसे पहली किस्म जाहिलियत की क्या है, कि इल्म से खाली होना है ही नहीं, इग्नोरेंट। मसलन किसी को गाड़ी चलानी नहीं आती, दैट्स इट, जिसको आप ला इल्म कह देंगे, इनलिटरेट कह देंगे, अनपढ़ कह देंगे, ठीक है। ये बड़ी आसान जहालत है, ये सिंपल किस्म की जहालत है। ये जिसमें होती है उसको भी पता होता है मैं जाहिल हूँ, खुद ही कह देते हैं ये बेचारे ड्राइवर और माली बाबा, बाजी हमें क्या पता, हम तो जाहिल हैं, बाजी किसी स्कूल ही नहीं गए तो पता नहीं, ठीक है। ये सिंपल जहालत है। दूसरी किस्म क्या होती है, किसी चीज के बारे में गलत एतिकाद रख के रॉन्ग किस्म की सोचे। मसलन आप आलिम हैं, लेकिन आपका नुक्ता नजर नबी सल्लम के बारे में गलत हो सकता है। आप उनको इंसानियत से उठाकर किसी और लेवल पे ले जाते हैं। आप उनकी जात के बारे में कई गलत काम कर सकते हैं। आप अल्लाह के बारे में जाहिल हो सकते हैं। आप कहते हैं मेरे अंदर भी अल्लाह, बाहर भी अल्लाह, ठीक है। किसी चीज के बारे में गलत एतिकाद होना, ये इल्म वाले का भी होता है। बाज लोगों के पास पूरा इल्म होता है, लेकिन किसी एक मसले में जाहिल हो सकते हैं। तीसरी जाहिलियत की किस्म क्या होती है, किसी काम को इंजाम देने का हक अदा ना करना, यानी उसका कमा हक कहू हक अदा ना करना। मसलन आपको तर्जमा याद करना था, लफ्ज ब लफ्ज एक एक लफ्ज, तो आपने जाहिलियत बरती 20%। आपने 50% याद किया, आपने 90% याद किया, 80% याद किया, तो आपने उसके साथ जाहिलियत बरती। तो अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं वलाकिन अक्सरहुम यजहलून। अब आप इन तीनों तारीफों की रोशनी में अगर जाहिलियत को देख लें, तो बात समझ आ जाएगी कि इंसानों में से अक्सर इल्म से खाली हैं, ठीक है। कुछ ऐसे कि जो है इल्म वाले, लेकिन किसी खास चीज में गलत है। तीसरा देखिए, जिनका अकीदा बिल्कुल ठीक है, कुरान सुन्नत पे है, लेकिन वैसे अमली तौर पे इंजाम देने का हक नहीं देते। हम अपने आप को चेक करें, हम किधर है, मैं कहाँ हूं। देखिए कुछ लोग होते हैं ना, दे डोंट नो, उनको नहीं पता कुछ, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं दे डोंट नो दैट दे डोंट नो, फर्क समझे। एक बंदा उसको बताए डोंट नो, आप मुझसे पूछते हैं कि आपको, लेट सी, अगर आप कहते हैं कि आपको गाड़ी चलानी आती है, मैं कहती हूँ आई डोंट नो, ये तो सिंपल जहालत, इसको सिंपल जहालत कहेंगे। दूसरी सूरत यह है कि मुझे गाड़ी आती होंगी, ये कौन सी मुश्किल है, तो ये कौन सी, आई डोंट नो दैट आई डोंट नो टू हाउ टू ड्राइव, ठीक है। ये जो पहली किस्म होती है ना, आई डोंट नो, ये लोगों को थोड़ी सी हिदायत की चमक दिखती है ना, आ जाते हैं फौरन, आते हैं कहते अच्छा शुक्र है कोई है, चलो भाई चलते हैं। लेकिन जो लोग इस जोन में होते हैं ना कि वी नो एवरीथिंग, हमें सब कुछ आता है, वो गलत बात पेश करेंगे, वो ज़ईफ़ रिवायतें पेश करेंगे, वो लिखी हुई बातें इधर उधर से पढ़ के सुन, आप उनको कहेंगे ना ये सही बात है, कहेंगे रहने दो हमें भी आता है। ये है दे डोंट नो दैट दे डोंट नो, ये फिरका बहुत मुश्किल से आता है, ये गिरोह फर्क है। अब ये एक बात करके अल्लाह सुबहाना ताला ने अगली बात में अब इन सारी बातों को बढ़ाया, पूरा सबक आप देखिएगा किसी सबक के ऊपर चलेगा, आयत 112 को देखिएगा, वह कजाली सारे दुश्मन पैदा किए, कुछ आदमी और कुछ जिन, यानी हिदायत के इस सफर से रोकने वाले सिर्फ इंसान नहीं होते बल्कि बास जिन्नात भी होते हैं जो नबियों के मिशन के मुखालिफ होते हैं, नबियों के रास्ते पे लोगों को चलने से रोकते हैं, तो वो लोगों को इस रास्ते पे आने से रोकते हैं। आप सोचिएगा यहां बात देखिए, अदूफ कौन से हैं, नबी के दुश्मन। यहां देखिएगा कि नबियों को तो मदद की जरूरत थी, लोग नबियों को अल्लाह के रास्ते में सपोर्ट करते, अल्लाह ताला ने लोगों के सपोर्टर भी बहुत से भेजे, लेकिन शैतान को खिलाफ करके भेज दिया, कुछ शैतानों को नबियों के खिलाफ कर दिया। क्यों? आजमाइश। देखिए कि अगर एक चीज को सब अच्छा, कुछ अच्छा कहें कुछ बुरा कहें, तो लोगों की आजमाइश होती है कि अब अकल इस्तेमाल करें कि बात ठीक है कि गलत है। तो लिहाजा जिसको आज की जुबान में आप समझे कि पॉलिटिक्स में एक हिस्बे इकतदार होती है और एक हिस्बे इख्तलाफ होती है। जब बचपन था तो कभी इलेक्शन की खबरें सुनते थे तो मुझे कभी समझ नहीं आती थी, मैं कहती थी कि जिन हिस्बे इकतदार तो समझ आ गई है, जिनको वोट ज्यादा मिले वो तो जीत गए, खत्म हो गई कहानी, दूसरों को तो घर चले जाना चाहिए। जब लफ्ज हिस्बे इख्तलाफ सुनती थी, आप इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, तो मैं कहती थी इनका भला क्या काम है, मिसाल है कि जो आ गए हैं वो तो अब कानून बनाएंगे, एक सदर बन गया, एक वजीर बन गया, एक कुछ और बन गया, ये क्या करेंगे, लेकिन जरा बड़े हुए तो समझ आया कि ये रोड़े अटकाते, ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे तनकीद करते हैं, ये सारे कैबिनेट में बैठ के गवर्नमेंट को करते हैं, समझ रहे ना, क्योंकि वरना तो हुकूमत सारी खुद ही करती गई। फिर जिसका फ्रिक्शन लिख ले, फ्रिक्शन बंदे की सलाहियतों को उभार देती है। मेरा और आपका दिल तो ये चाहता है कि खाली रोड हो और मैं सीधी भागूं अपनी गाड़ी लेके, चाहे वो हाई रोड है या नॉर्थ सर्कुलर रोड है या कोई F6916 है या जो भी रोड है, हमारा ये भी दिल चाहता है कि रोड पे कोई गाड़ी या बस ना हो, और हमारा ये भी दिल चाहता है कि हम सबीलुल जन्ना की रोड पे चढ़े तो कोई रुकावट ना हो, सब कहें जाओ जाओ जाओ, 1.5 साल 1.5 साल तुम फ्री, हम तुम्हें कुछ नहीं कहते, घर वाले भी आपके लिए रास्ते ही बनाते रहे, दिल तो यही चाहता है। लेकिन प्रैक्टिकली देखिए हर जगह हर्डल, सबसे पहले तो अंदर का ही बुत नहीं टूटता, सुबह उठना ही मुश्किल और मंडे को तो उठना इतना मुश्किल, वीकेंड की सारी चुगलखोरियां मंडे का दिन करता है, सच्ची जो बात है, जिनका वीकेंड फुर्सत से गुजरता है वो तो घड़ी देख रहे होते हैं कब बचता है वक्त और जाएं जल्दी निकलें बिस्तरों से थक गए, और जो सारा वक्त सोशलाइजिंग में वो कहते अल्लाह करे मंडे को सूरज ही 10 बजे निकले, ऐसे ही होता है ना, फर्क पड़ता है। तो जब एक बंदा हिदायत के सफर पे चलता है तो सबसे पहले तो आपका अपना बोलता है, ये फ्रिक्शन है, ये है दुश्मनी की आगाज, फिर उसके बाद दूसरे लोग, हम सोचते हैं कि हम तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो लोग क्यों मुखालिफ हैं, घर वाले क्यों और वो क्यों, तो अल्लाह कहते हैं ये फितरत का असूल है, छुरी को आपने तेज करना हो तो कैसे करते हैं, कभी देखिए आप तो लोग करते ही नहीं, मुझे लगता है चीज खराब बाद में होती है फेंकते पहले, क्योंकि नहीं निकालनी है, अंदर अलमारियों में इतनी रखी हुई है जल्दी निकालो, चीज खराब होती है तो खुशी होती है अब लोगों को कि निकालो नहीं क्योंकि पहले ही बहुत है, लेकिन पहले दौर में लोग छुरी को तेज करते थे, एक कटर होता था मुझे आज भी याद आता है हैंडल के साथ, और ऐसे दो पहिए गिरारी की तरह घूमते और उसके बीच में छुरी को रख के रगड़ते थे, ये क्या हो रहा है, छुरी तेज करते हैं ना, लोहे को लोहा काटता है, इस तरह दीन के रास्ते में ये मुखालफ होते हैं, हमें स्ट्रॉन्ग करती हैं, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, ये लोग आपके दोस्त हैं जो आपको दीन के रास्ते में सताते हैं, ये आपके घर वाले भी हो सकते हैं, ये आपके अंदर वाले बाहर वाले भी हैं, अगर ये मुखालफतें खत्म हो जाएं तो यकीन करें कि हम ठंडे होके बैठ जाएं, अपने अपने ईमान को चेक किया करें, आप देखिए यहां अगर मिसाल देती हूं कि हम सब मुतमईन है, फुल बेहतरीन माहौल, एसी भी, हीट भी सब मुनासिब, सुकून से आप सो देंगे, और अगर मैं ऊपर से मीठी मीठी बातें करने लग जाऊं तो आधे सोए होंगे। और अगर इतने में आप में से किसी को सर में दर्द शुरू हो जाए, किसी को अच्छी लगेगी सर दर्द, पाँव में दर्द, लेकिन ये सर और पाँव का दर्द आपके लिए नेमत है, ये आपको बेदार रखता है, आप बार बार फोकस करते हैं, आप हिम्मत करते हैं, तो ये जो मुश्किलात होती है ना, ये तो हक के रास्ते में जमाने के लिए आती है, फ्रिक्शन को बर्दाश्त करने की ताकत है, और खरे और खोटे की पहचान भी यही होती है। हक और बातिल में अगर ये कश्मकश ना होगी, पता ही नहीं चलेगा कौन हक परस्त है और कौन झूठ परस्त है, कौन अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करता है, कौन सिर्फ बातें करने वाला है और कौन करने वाला है। और दुनिया तो याद रखिए आजमाइश की जगह, अल्लाह ताला ने तो हर जगह पे हर्डल्स रखी हुई है। आपको वो लोग अपने दोस्त और अपने बेहतरीन मोहसिन लगेंगे जो आज आपको सताते हैं, मुश्किलात में लेके आते हैं, क्योंकि इसी वजह से तो हम जमे रहते हैं। कभी आपने जहाज चलता हुआ देखा हो तो ऑपोजिट द विंड जाता है, कभी आपने देखा कि जब आप इस इधर से ईस्ट साइड पे जाते हैं, यानी अगर आप सऊदी अरब या दुबई जाते हैं तो आपकी फ्लाइट छोटी होती है, जब आप वापस आते हैं ना दुबई से या सऊदिया से या पाकिस्तान से, तो आप नोट कीजिएगा कि फ्लाइट का टाइम ज्यादा होता है, ये हवाओं की मुखालफत है। ये सारी चीजें बंदे के रास्ते को कम तो कर सकती हैं, स्पीड कम हो जाती है मुखालफत तो में, जब हमारे लोग माविन नहीं होते, हमारे मेरे से नहीं होता, फलां तो हफ्ते में 7 दिन करता है, मैं तो 5 दिन नहीं कर पाती, 4 नहीं करती, लेकिन अब जिंदा रहते हैं। और अगर ये मुखालफतें खत्म हो जाए, शुरू में खत्म हो जाए ना, तो बंदा परेशान होता है, एक खास हद पे आप जब जहाज उड़ जाता है ना, फिर मुखालफत खत्म हो जाए, फिर फर्क नहीं पड़ता। तो शुरू में जो जितनी इस वक्त कुर्बानियां करके आता है, जितना इसार है, उतनी इंशाल्लाह फ्यूचर में इस्तकामत होगी। और मैं तो अब मुंतजिर रहती हूँ, मेरे कान मुंतजिर रहते हैं कि 10 पारों के करीब आ गए हैं, कोई आप में से आके सुनाए कि हमने अब ये चीज छोड़ दी, इस 7 पारों ने हमारा ये छुड़ा दिया, अब हमने फैसला कर लिया इधर फोकस, अब ये भी छुटा। जो बंदे सफर के अंदर कुर्बानियां देंगे, कोई जॉब छोड़ रहा है, कोई कुछ छोड़ रहा है, कोई कुछ छोड़ रहा है, तो वो आगे बढ़ेंगे। और जो हफ्ते का एक दिन, वो इस कोर्स के साथ ही पैरेलल हो जाएंगे, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन ये होता है। अल्लाह सुबहान तआला हमें यही बता के कहते हैं कि उनका तरीका वारदात क्या है, यू ही बाद मिलाबाद। अब ये तरीका देखिएगा कि शैतान कैसे लोगों के दिलों में वसवसे डालते हैं, वसवसे, खिस पर खिस पिस पिस पिस, इशारों में, कनायों में, क्या करते हैं, जुखरुफल कौली गुरूरा, चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं धोखा देने के लिए। ये है तरीका वारदात। अगर आप इस लफ्ज के ऊपर एक लिख लेना तरीका वारदात, तो बात समझ आ जाएगी कि हक के रास्ते से लोग हमारे पांव कैसे उखाड़ते हैं, विस्पर्स, विस्परिंग करते हैं, सोच लो, देख लो, फिर ऐसे ही ना हो जाना, फिर ज्यादा ना हो जाना, फिर आगे ना हो जाना, बहुत ना हो जाना, और देखो क्या कर रहे हो, थोड़ा समझ के सोच के, फिर देखो मियां भी शादी दूसरी करने के मूड में दिखते हैं, बेटियों के भी तो रिश्ते हैं, देखो अभी इतनी, ये है जुखरुफ अल कौली गुरूरा, लफ्ज इधर बड़ा खूबसूरत है जुखरुफ, इस पे बात करेंगे। अगर आप लफ्ज देखें जुखरुफ, तो पहली बात है कि इस लफ्ज की एक सूरत भी है, सूरत है जुखरुफ। इसका लफ्जी माना क्या होता है, बनाओ सिंगार, डेकोरेट करना, जैसे हम किसी चीज को सजाते हैं ना, डेकोरेशन है, वनीर चढ़ाना किसी चीज पे, किसी चीज का कमाले हुसन, किसी चीज को बहुत खूबसूरत करके पेश करना। मसलन आप देखिए कि पीतल होता है ना, तो उस पर गोल्ड प्लेटेड चीज होती है, ये प्लेटिंग है असल में। जुखरुफ अल कौल, मुलम्मा शुदा बातें, झूठ मिलाकर पेश की गई बातें। सोने को देखिए पहले पकाते हैं ना, फिर वो कुंदन बन जाता है, फिर उस पर हल्की सी पॉलिश करते हैं तो चमक आती है। थोड़ा सा आप मेरे साथ चले, प्योर गोल्ड है, अपनी इमेजिनेशन में लाएं, बिल्कुल असल में कड़वा काला सा होता है, खूबसूरत नहीं होता, प्योर गोल्ड। फिर वो उसको ढालते हैं, ढलते हैं, कभी आप अगर किसी ज्वेलर को कहे ना कि हमें ढले हुए चीजें दिखा दो पहले, तो आप देख के लेंगे ही नहीं, अब बन गया कंगन बन गया, अब आप कहते इसमें ये नगीने लगा दो, ये कर, उसके बाद आप कहते हैं कि गोल्ड में शाइन कैसे आती है, उसको खींचते हैं, ये जो पॉलिश कहते हैं ना सुनार, ये फ्रिक्शन है, यही है वही जिसको ऊपर कहा गया कि फ्रिक्शन है अधोवन। अब जितना सोने को वो रगड़ते जाते हैं ना उतनी उसके अंदर चमक आती जाती है। ठीक है, अब ये तो था प्योर गोल्ड, रगड़ पड़ी चमक आ गई, इसीलिए वो ऊपर से कुछ उसकी वेस्टेज ले लेते हैं क्योंकि वो जब रगड़ते हैं तो कुछ सोना उड़ता है। अब दूसरी तरफ लीजिए, एक पीतल का या चांदी का कंगन आपने बना लिया, अब उसको भी चमकाना है, उसको क्या करेंगे, एक गोल्ड के पानी में डिप करेंगे बस, जब डिप करके निकालेंगे तो वो चमकता होगा। ये है का दीन क्या है, ये प्योर गोल्ड है। जितनी मुख्तलिफ चीजों में पढ़ने के बाद कोई बंदा इसमें से गुजरता है, बिलाल की तरह और बीबी सुमैया की तरह, उतना निखरता है, उतना दीन का काम बड़ा करके जाता है। और जो लोग सिर्फ ऊपर से इस्लाम का एक विनीर चढ़ा लेते हैं ना, हम जैसे बोन मुस्लिम, तो उनके अंदर खोट खपट रह जाता है, देखने में चमकते हुए। अब्दुल्ला बिन उबई की चमक दमक आगे पढ़ेंगे सूरह मुनाफिकून में, अल्लाह ताला उनकी जाहिरी हुसन की तारीफें करते हैं, लेकिन हकीकत क्या है कि उनके अंदर कुछ नहीं होता। हक के रास्ते में रगड़े खाकर इंसान सोना बनता है, लेकिन नबियों का रास्ता तो यही होता है, सच्ची जो बात है, इसमें तो कोई शक ना करे कि नहीं नहीं आगे जाके बहुत ऐसा हो जाएगा वैसा होगा। हाँ यही है, यही जिंदगी है भाई दीन वाले की, मानते हो आते हो, आज सीखने में ये जिंदगी है, कल सिखाने में ये रहेगी। लेकिन जो बात है, अल्लाह ताला कहते हैं कि वो लोगों को चिकनी चुपड़ी बातें बताते हैं। कैसे बताते हैं, मसलन आप देखिए कि जब लोग दीन पे आते हैं, कुछ कुर्बानियां देते हैं ना, दे के बैठते हैं ना, चले और आपने कोई कुर्बानी नहीं दी इस वक्त, आराम की तो दी है ना, घर के काम की तो दी है ना, थोड़ा सा तो कुछ कमी आई है ना। अब जब आप इन कुर्बानियों में आते हैं ना, तो बाहर जो दूसरे लोग होते हैं वो सोचते हैं कि आप किन चीजों में पड़ गए, आपको तो ये कुछ नहीं करना था जो आप करने लग गए। ठीक है, अब होता क्या है कि वो आपको इसके साइड इफेक्ट्स दिखाएंगे, सोच लें, देख लें, कर लें, ये है वो है दिस एंड दैट। लेकिन अब मुआशरे के अंदर आप दूसरी तरफ लें, आप तो कुरान पढ़ने आई, अब आप में से कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी भी गया होगा या स्टिल अभी भी जाता होगा, उधर के घंटे भी ज्यादा, उधर की लाइबिलिटीज भी ज्यादा, उधर के काम होमवर्क भी ज्यादा, लेकिन उधर ग्लैमर क्यों है, ज़ुखरुफ़ अल-क़ौली गुरूरा। ये आज की सोसाइटी का ज़ुखरुफ़ क्या है कि पीतल को सोना बना के दिखाओ, और माँ बाप अच्छे भले दीनदार समझदार माँ बाप अपने बच्चों को 15-20-20 साल तक स्कूलों में जाते छोड़ते लेते, उनके खाने पीने नाश्ते करते हैं, क्योंकि पूरी सोसाइटी में ये विनीर चढ़ा हुआ है कि तुम जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना कामयाब होगे। हालांकि आपने खुद देखा है, कई लोग देखे होंगे मास्टर्स कर जाते हैं वो इकोनॉमिक्स में, जॉब ही नहीं मिलती, अखीर साल 2 साल धक्के खाने के बाद उनको किसी दुकान पे जाके सेल्समैनशिप करनी पड़ती है कि नहीं। जो बंदा 20 साल तक पढ़ता है और उसका उसमें कितना लाखों लगता है, करोड़ों ही लगता है, बल्कि एक एक खानदान का हमारे बच्चे है वो डेंटिस्ट बना, तो गालिबन कहते हैं कि पाकिस्तानी हिसाब से 1 करोड़ रुपया लग चुका है बाहर पढ़ने गया। अब वो अभी बना, फिर इसके साल दो चार, कहीं अभी भी 2-3 साल के बाद कहीं दुकान खोलेगा तो लोगों के दान जोड़े तोड़ेगा तो वो करोड़ों वापस आएगा। बात समझ रहे हैं ना, ये है ज़ुखरुफ़ अल-क़ौली गुरूरा। आपको वो मान याद है जो आपने कभी तारीख में पढ़ी होगी कि एक बच्चे को इल्म हासिल करने के लिए भेजा और कुछ पैसे उसके जेब खर्च के जो थे ना उसकी बुनियान के अंदर सी दिए, रास्ते में डाकू आ गए, पैसे हैं कहाँ है, देखे ढूंढे को ले कि हक इधर है, कहा ये बनियान के अंदर है, कहा तुम ना बताते तो हमें नहीं पता चलना था, कहा नहीं, माँ ने जाते हुए एक नसीहत की थी, झूठ ना बोलना। बिलीव मी, माए बाप बच्चों को कुछ 1,000 रुपए कुछ दे के एक उस्ताद के पास भेज देते थे, जाओ बुखारा में जाके इमाम बुखारी से पढ़ो, जाओ इमाम मुस्लिम के पास पढ़ो, इमाम मालिक के पास पढ़ो, जब पढ़ लोगे तो आ जाना वहां मिलना, हम तुम्हारे पास आएंगे, फारिग, दैट्स इट। फिर अगले उस्ताद, फिर अगले उस्ताद, ये जो ये आदि गुरूर है, ये खुद सिस्टम बनाने वाले मान चुके हैं अब कि हमारे सिस्टम में बहुत खोट खपट है, लड़कियों को लड़कों के साथ बिठा के, यानी आज के दौर का जो सबसे बड़ा मल है आप अगर देखें तो वो उसमें मीडिया के साथ साथ एक एजुकेशनल सिस्टम है। मैं ये नहीं कहती कि ना पढ़ो, साइंस पढ़े, केमिस्ट्री पढ़े, फिजिक्स पढ़े, लेकिन ये तरीका कि घोड़े की तरह सामान उठा के 15 साल पहले आप जाएं, छोटी किताब बड़ी किताब, आपको होता है कि आज के दौर में जो दुनियावी तालीम देने वाले टीचर्स हैं, यानी जो हम तो एक बेचारे ऐसे ही है ना रह जाते, हमारी क्या औकात है, हम किसी को क्या कह सकते हैं, तौबा करें, हम तो कोई दुनिया की चीजें नहीं पढ़ा रहे, लेकिन दुनियावी टीचर ने बताया कि हमारे पास जो बच्चे आके बैठे होते हैं ना, वो इतने शार्प होते हैं कि जो सब्जेक्ट है उनकी जो बुक होती कहती, बच्चे 15 मिनट में पढ़ जाते हैं वो सबक। जो बुक उन्होंने हमारे, मतलब पूरी लंबी मीटिंग हुई थी मेरी, अमेरिका में एक टीचर है, बहुत तजुर्बाकार है, कहती आपको पता भी नहीं कि हमारे बच्चों में कितनी सलाहियत है। जो सिलेबस की बुक होती है ना, हम टीचर होने के नाते हमें दिया होता है कि ये बुक आपने बच्चे को इतने हफ्ते इतने महीने में पढ़ानी है। कहती यकीन करें हमारी क्लास में जो आम बच्चे होते हैं ना, उसमें से आधे से ज्यादा बच्चे वो उससे आधे से कम वक्त में पढ़ चुके होते हैं, तब फिर वो शरारतें करते हैं, फिर वो क्लास में टीचर की बुली करते हैं, दिस एंड दैट, क्योंकि वो उनके दिमाग से बहुत तेज है। तो कहती मेरा तो एक ही तरीका है, जो मुझे कहा होता है पीछे से उसको पढ़ाने के साथ मैं फिर उनको अगली चीजें बताती हूँ ताकि ये इन्वॉल्व रहे, लेकिन सब एक डगर पे चल रहे हैं। फिर इसी तरह आप देखिए कि दुनिया के अंदर कामयाबी के लिए दुनिया की चीजों को इतना बड़ा बना के कि आखिरत उसके पीछे छुप जाए, इससे बड़ा जुखरुफ और क्या होगा। आज के दौर में जुखरुफ अल कौल की बहुत सी मिसालें, अगर आप पिछली तफसीर सुनते हैं तो उसमें मैंने काफी मिसालें दी, जिसमें एक हल्का सा इशारा कर देती हूँ, डार्विनिज्म, नाम सुना है, थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन, एक है एवोल्यूशन, वो कहते हैं कि बंदर से इंसान बना है, बंदर से इंसान को मतलब एवॉल्व हुआ है, ना के बना है। अल्लाह ताला कुरान में जब आप बार बार पढ़ते हैं तो सूरह ज़ारियात में क्रिएशन का पर्पस क्या दिया गया, अल्लाह की इबादत, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। अब ये तो था असूल, इस पे चल के अगर बच्चे की शुरू से एजुकेशनल सिस्टम पे चलता ना, तो बच्चे को चौथी क्लास में पता चल जाना था कि इबादत के लिए पैदा हुए, और इबादत में बंदगी है, गुलामी और इताअत है, कमाले हुब कमाले जुल, वो उसकी जिंदगी इसी पे चलनी थी, बात सीधी थी, ये तो था सीधा तरीका। लेकिन जब उन बच्चों को हमने बचपन से डार्विनिज्म पढ़ाया, और डार्विनिज्म ने क्या कहा कि इंसान पहले बंदर था और बंदरों की औलाद इवॉल्व होते होते इंसान में बदल गई। अब ये थेरी किसने पेश की, आपको बताया कि इस थेरी को पेश करने वाला शख्स कौन था, डार्विन उसका नाम नहीं था, ये मजहबी, पहले इसने को पेश किया, और जब ये नजरिया इसका पेश हो गया और लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया, तो इसकी मौत एथियस्ट होके आई, इसने खुदाई का दावा कर लिया। क्यों आप कहेंगे इतनी लंबी बात क्या है, तो आइए थोड़ा सा बता देती हूं कि पीछे जुखरुफ क्या है इसमें। एक दफा तुम ये मान जाओ कि इंसान बंदरों की औलाद है, जानवर की औलाद है, कहले कहने में अच्छा लगता है कि हमारे बाप दादा बंदर थे, जानवरों की औलाद है, तुम मान जाओ, फिर अगली बात हम मनवाएंगे क्या, नंबर एक जानवर कपड़े नहीं पहनते, तो इंसान को भी आजाद कर दो, किससे, शर्मो हया से आजाद कर दो, जो मर्जी करो, फिर न्यूड कैंप्स बने, फिर लोगों को नंगा रहना जो था वो इजी लगा, वो कहते हैं इन कपड़ों में, आगे पढ़ेंगे सूरत अल अराफ में, कहते थे इन कपड़ों में गुनाह करते हैं, लिहाजा हरम में जाते हुए ये सारे कपड़े उतार के नेकेड मत, बिल्कुल मदर कॉल क्या थी कि चूंकि इन कपड़ों में गुनाह करते हैं, तो अल्लाह के आगे जाते हुए ये कपड़े गुनाह ले छोड़ो, नेचुरल ड्रेस में चलो, बेहयाई पैदा हो गई। फिर देखिए दूसरी चीज, जानवर किसी हद तक अपने बच्चों का ख्याल तो रखते हैं, हर जानवर रखता है, बिल्ली भी छोटे छोटे बच्चों को पकड़ के बिलोंगों को फिरती है, लेकिन कोई जानवर अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखता, तो लिहाजा तुम एक दफा बंदरों की औलाद बनो तो हम तुम्हें ओल्ड होम्स में तुम्हारे माँ बाप को फिकवाते हैं, बच्चों को किसी हद तक साल 2 साल तक तुम देखो, और 18 साल तक बर्दाश्त करो, देन किक आउट, जुखरुफ अल कौली गुरूरा। इस एक नजरिए ने इंसानियत को तबाही पे डाल दिया, आपको शायद पता है कि नहीं पता, और आज इस पे PhDs होती हैं, आज इसके ऊपर लोगों के थीसिस है, और इसके ऊपर सर का खिताब है, पिचमैन नाम का एक शख्स था, 1912 में इसने दावा किया कि मुझे इसका सबूत मिल गया, क्योंकि डार्विन की थ्योरी बहुत पुरानी है, लेकिन इसका सबूत, अगर तुम कहते हो कि इंसान बंदर से इंसान बना है, तो कोई इंटरफेस ऐसा गुजरा होगा ना कि जिसमें इंसान और बंदर में एक ही खूबियां हो, इसने का सबूत मिल गया, एक पुराना स्केल्टन निकाला गया, और उसको दिखाया गया जिसके सर की हड्डी इंसान की थी और ये जो जबड़ा है ना जॉस ये बंदर के थे। ये दिखाया इसने, इसको इसके ऊपर खूब प्रोटोकॉल मिला, सर का खिताब मिला इसको, बहुत ज्यादा यानी प्रोटोकॉल मिला गया कि वाकई इसने डार्विनिज्म को प्रूव कर दिया कि देखो ये इंटरफेस का इंसान था, ये हो गया दिस एंड दैट। और इसके बाद आपको तक कि 1949 में ये पोल खुल गया। जब उस स्केल्टन के ऊपर मजीद रिसर्चेस की गई तो पता चला कि ये सिर्फ और सिर्फ एक धोखेबाजी थी, खुद आर्टिफिशियली इंसान की खोपड़ी के साथ बंदर की हड्डी लगा के इस नजरिए को साबित करने के लिए कि देख लो ये एक फोजरी थी। का मकसद हयात जो है वो क्या हो, इवॉल्व जस्ट बाय चांस इंसान बन गया, वो पर्पस पीछे से कटवाना है कि अल्लाह ताला कहते हैं फहसिब तुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, सूरत मोमिनून की आखिरी आयत में अल्लाह ताला कहते हैं क्या तुमने ये गुमान किया कि हमने तुम्हें बेमकसद पैदा किया और क्या तुम हमारी तरफ लौटाए ना जाओगे। तो ये बातें लंबी होती जाएंगी, लेकिन याद रखिए आज जिस सोसाइटी में हमारे बच्चे पल रहे हैं ये जुखरुफल कौली गुरूरा की सोसाइटी है, शुगर कोटेड सोसाइटी है, खराब चीजों को कैसे वो खूबसूरत स्लोगन्स और मशहूरियां दिखा दिखा कर आम करते हैं और वो कहते हैं कि देखो जाके हम इसमें कितनी मेहनत करते हैं। आपको पता है कि ये पेप्सी आम नहीं हुई थी, पीछे शायद आपने सुना ही थी, मैंने ये बात की नहीं, मुझे याद नहीं इस वक्त, पेप्सी और ये जितने सॉफ्ट ड्रिंक्स है ये शुरू में पॉपुलर नहीं हुए, कौन पिए, काले रंग का अपना पी दे ले तो जलन नहीं पीते थे लोग, आखिर ये कंपनियां बैंकरप्ट होने लग गई और इन्होंने फिर इसके लिए मीडिया की मदद ली, हीरोज को फिल्मों में कोक पेप्सी और ये ड्रिंक्स पीते हुए दिखाया और पीते हैं और उछलते हैं कूदते हैं, लोगों ने कहा वो ये है जुखरुफ अलकोहली गुरूरा। सिगरेट, ये सारी मैंने, आप पिछले साल की तफसीर सुनना चाहें तो सुनिएगा, और एक लेक्चर है इसमें अफा हुक्मल जाहिलियती जाहिलियत की, किसमें मैंने 2-3 दफा किया है, एक दफा तो मैनचेस्टर से किया था, वो भी कहीं है एडिट, तो बहरहाल आप उस सुन के देखे उसमें कितनी मिसालें मैंने पढ़ के सुनाई थी। सिगरेट आम नहीं हो रहे थे, लोग कोई नहीं पी, कौन पिएगा आग, अपने अंदर आग डालता है, फिर इन्होंने हीरोज को सिगरेट दिए जो फिल्मों में कश लगाओ, जब वो पिए तो लोगों ने पीना शुरू कर दिया। कोई जो चीज आज आपको कल्चर का हिस्सा दिखती है ये इतनी मेहनत और मुश्किल से उन्होंने दिखाई क्योंकि लोगों को उसके लिए उसके सहर में मुब्तला करना था, और जो दूसरी तरफ हो वो कहते हैं माशाल्लाह आप दीन पे पूरे आ जाएं कहते हैं आप बहुत रिजिड है, और कोई दुनिया का पूरा काम करे बहुत आगे कहते हैं बहुत परफेक्शनिस्ट है। रिजिड और लिबरल की बांट किसने लगा दी, कोई दीन और दुनिया को साथ लेके चले कहते वेल बैलेंस्ड, यस नमाज पढ़ते हैं लेकिन शादियों में फिर मजबूर होके फिर ऐसे ऐसे काम करते हैं, तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा। अब आप और मैं इस बारी बात को उछाल कर आगे चल पड़े, नहीं, इसके लिए हमें एक काम करना है, सिर्फ एक काम, ये विनीर उतार दे, जो शुरू में मिसाल दी है ना सुच्चा सोना और खरा सोना कैसे देखते हैं ज्वेलर, जाके उसको उसी पानी में डिप करते हैं, वो जो पानी होता है ना सोने का वो सारा नीचे चला जाता है, एक्वारिजिया एक एसिड का नाम है, वो उसमें डालते हैं ना वो सोना उसमें डिजोल्व हो जाता है, असल सोना पता चल जाता है और जो पॉलिश होती है वो तो आप इस्तेमाल कर लें थोड़े दिन के बाद सफेद हो जाएगा। आज हमें अपनी यूथ के दिमागों से, आज इस्लाम इतना खूबसूरत तरीके से यूथ और नॉन मुस्लिम के जहनों में अपनी जगह बना रहा है कि मेरे और आपके जज्बाती तकरीरें करने की अब इतनी जरूरत नहीं रही, आज इनको खुद पता है कि सूद की जो सतह जो रेशियो ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता जाता है तो हमारी इकोनॉमी फ्लॉप होती है, अब ये खुद कम रेशियो पे आ रहे हैं, बिला सूद पे आ रहे हैं, इस्लाम की जो बातें हैं वो गलत है, इस्लाम की बातों को खूबसूरत करने के लिए इस इल्म को आम कर दें, डीग्लैमराइज कर दें बस इनको। आप देखिए ना एक बच्चा आपका पीछे पड़ा हुआ है चॉकलेट चॉकलेट, उसने चॉकलेट खानी है, उसका दिल करता है, अब आपको पता है कि इस चॉकलेट के खाने से उसके कितने नुकसान है या उसके दांत खराब होंगे या कुछ भी है। अब एक सूरत है वो खूबसूरत रैपर ट्विंकली ट्विंकली किस्म की, वो एडवर्टाइजमेंट नाचते कूदते उनको दिख रहे हैं, वो तो कहेगा हाय ये चॉकलेट मेरी जिंदगी है, आप क्या करें, किसी वक्त उस बच्चे को ना उसके अंदर की चीजें, वो कीड़ा वो अंदर कहाँ जाता है क्या, बैठ के बच्चे को दिखा दे कि बेटा ये रखा है तुम्हारा चॉकलेट और इधर आओ, ये देखो ये चॉकलेट तुम्हारे दांत पे आएगा, फिर ये खाएगा, फिर तुम्हारा दांत खुलेगा होते हुए, फिर अंदर देखना ये तुम्हारा दांत कट जाएगा और तुम्हें फिर खून निकलेगा, अब खाना है तो खा लो, अक्लमंद बच्चे छोड़ देंगे। इस वक्त इस तरह की तबलीग की जरूरत है कि अपने इस्लाम की खूबसूरत चीजें दिखाएं। हम वही पुराना सड़ियल किस्म का तरीका और पुराना इस्लाम जिसको कोई एक्सेप्ट नहीं करता, और कोई जरा सीधे तरीके पे इस्लाम लेके आए तो उसके ऊपर हम कई किस्म के इल्जाम लगा देते हैं। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला आज हमारे जरिए से ये काम ले ले। अंदर कुनीन है, यकीन करें आज की दुनिया कोई खूबसूरत है, बाहर के मुल्कों को लोग ऐसे लेते हैं जैसे जन्नत है, सब जन्नत है, सिर्फ हरी जन्नत है। आज इन लोगों की जो अंदर की जिंदगी, अगर आप उनको खोल के दिखा दें कि देखो वहां जाके जो मेहनत करनी पड़ती है, कोई भी नहीं अपने घर बेचते हुए चार चेहरे हैं, जितने फेमस लोग होते हैं बेचारे आप देखें कि उनकी जिंदगी अंदर से इतनी अजीरन हो जाती है, और एक सच्चे मोमिन की जिंदगी कोई ग्लैमर नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो खूबसूरती और जो उसके अंदर सच्चाई है जो उसको मिलती है, अगर आज आपने अपनी इस तालीम के जरिए वो लोगों को दिखाना शुरू कर दिया तो आप देखेंगे कि ये सब खत्म होगा और लोग भाग के आएंगे। इस्लाम इतना खूबसूरत दीन है, और आप देखिए कि लोग नबियों के रास्ते में रोड़े नहीं अटका सके, आज कहाँ उड़ाएंगे। इसलिए अल्लाह ताला ने इन सारी बातों की बात करके कि देखो ये नबियों के खिलाफ ऐसी बातें आम करते हैं, लेकिन असल बात क्या है कि वलौशा रब्बुका मा फालू, अगर आपका रब चाहता तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते थे। यानी आज कुफर को और बातिल को जो ये पांव जमाने का मौका मिल रहा है ना, ये अल्लाह की इजाजत से हो रहा है, अल्लाह के हुक्म के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता। अबू जहल की क्या मिजाल थी, उठाता अल्लाह उसका हाथ छल कर देता, नहीं ये अल्लाह की तरफ से छूट थी। तुम आजमा लो, जाओ इस बंदी को आजमा, देखना ये बंदी जन्नत में पहुंच जाएगी, लेकिन तुम अपना इंजाम बुरा कर रहे हो। सूरह यासीन में आप जाके पढ़ेंगे एक बंदे का जिक्र है, इतनी तड़प थी उसके दिल में कि लोगों इस हिदायत को ले लो, लेकिन लोगों ने उसको मार दिया। जो ही लोगों ने उसको मारा, अब क्या उसने कहा शुक्र है मुझे मार दिया, नहीं, काला या लैत कौमी यालमून बिमा गफर अली रब्बी वजअलनी मिनल मुकरमीन, ए काश मेरी कौम को मालूम हो जाए कि मेरे रब ने मुझे बख्श दिया और देखो मेरी कितनी इज्जत की है। उसने कहा अल्लाह मेरी रूह का ये सफर लोगों को सुना दो, शायद मेरा अच्छा अंजाम देकर लोग जो है पता चल जाए उनको कि मैं ठीक रास्ते पे था। आज ये तड़प अगर आपके दिल में आ गई ना, आप लोगों को ना सोने देंगे ना सोएंगे, कि लोगों असल असल ये है, इस किताब से जो मोहब्बत मिलती है वो तो अल्लाह के घर में जाके भी बाज दफा फोकस नहीं बंदा हो पाता। कुरान पढ़ा हो, सीरत पढ़ी हो, फिर अल्लाह के घर में जाके मजा आता है, वरना वहां की दौड़े ही है। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे हाल में इस चीज को लिख दे कि आज जिस हिदायत के सफर पे हम चले हैं अल्लाह ताला हमें इस पे चलता रखे। रह गए वो लोग जो इस रास्ते में रोड़े अटकाते हैं, जो सुस्तियां डालते हैं, जो बुरी खबरें फैलाते हैं, फजरहुम वमा यफ्तरून, तो छोड़िए इनको और इनकी इफ्तरा परदाजियों को, ये है एक अच्छे दाई दीन को मशवरा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ बात करते हैं ना, उनको उनके हाल पे छोड़ दो, सफाइयां ना पेश करो। हमारा हाल ये कि हाँ फलाने ये बात की, अच्छा क्यों कही, आए मैं बताता हूं आपको ये वो, नहीं, उनको उनके हाल पे छोड़ दो, तुम अपना काम करो। सच में बड़ी कशिश होती है, जिसकी तबीयत में सच्चाई होगी ना वो जरूर इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला। फिर अगली आयत में देखिए कि इसी से आगे कुछ और बात है, 113 वली तस्गा इलैहि अफ़इदतुल्लसीना ला युमिनून बिल आखिरा, और ऐसा इसलिए है ताकि माइल हो जाएं इसकी तरफ इन लोगों के दिल जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते। वली यरदौहु वली यक्तरिफू मा हुम मुक्तरिफून, और ताकि वो इसको पसंद भी करें और फिर वो अपने बुरे आमाल का जो भी अंबार जमा करना चाहें तो जमा कर ले। थोड़ी सी मुश्किल बात है। अब ये आयत जो है ना, इसके अंदर लफ्जी तर्जमे के लिहाज से कुछ लफ्ज मुश्किल है, लेकिन कोई बात नहीं, अब आप बड़े भी हो रहे हैं और आपको मुश्किल चीजें भी समझनी है। अल्लाह ताला कहते हैं कि ये अल्लाह का असूल क्यों है, कि अल्लाह ने कुछ दुश्मन पैदा कर दिए और वो लोगों में जाके चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं और इस्लाम के खिलाफ बातें कर जाते हैं, तो अल्लाह ने ऐसा मौका क्यों दिया? क्यों दिया? इसलिए कि वो लोग ला यूमिनून बिल, जिनके दिल में आखिरत नहीं है, दुनिया बसी हुई है ना, वो इन कच्ची पक्की बातों से दीन का रास्ता छोड़ दे, ये मतलब है बात। वैसे आप इसको एक मिसाल से समझिए, थोड़ी सी साइंस पढ़ी होगी आपको, पता है कि पानी के अंदर अगर इलेक्ट्रोलिसिस करें, इलेक्ट्रोलिसिस एक साइंटिफिक तरीका का रहा है, पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं ना तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस जो होते हैं ना वो अलग अलग हो जाते हैं। हर चीज में नेगेटिव पॉजिटिव है, इलेक्ट्रोलिसिस से पॉजिटिव और नेगेटिव अलग हो जाते हैं। जिसको पॉजिटिव में कशिश होती है वो इधर चला जाता है, नेगेटिव को इधर हो जाती है। कभी मिकनातीस से किया होगा, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, मैग्नेट। कभी आप लोहे के इर्द गिर्द ऐसे मैग्नेट रख के ना तो उसको हिलाए तो जितना लोहा होता है ना वो उसके पोल्स के पास आना शुरू हो जाता है। हक और बातिल दो मुख्तलिफ पोल्स हैं, ठीक है। दुनिया में हम घुले मिले हैं, आप एक खानदान को ले, आपकी चार बहनें, दो भाई, मामू, खाला, पुप्पी, हम सब ऐसे ही थे जैसे घुला मिला पानी है। खुशियों में खुश भी हो जाते हैं, नाराज भी हैं, दुखों में दुख है, चल रहा है जो मामला चलता है, ठीक है। अब ऐसे ही है, अब आप सोचिए कि हम सब एक ही, हमें खुद भी नहीं पता था हम कितने पानी में है। वल्लाह ही इस किताब क्लास में ना बैठे तो हमें खुद भी नहीं पता चलता हम कितने पानी में है। हम तो खुद बिखर जाते हैं, पैर पिघल जाते हैं और इधर उधर जाते हैं। अब आप उस घुले मिले माहौल में थे, आपके पास कुरान का मैग्नेट आया, अब इस मैग्नेट के साथ पोलराइजेशन होगी। जिनकी तबीयत सच्ची होती है ना, जिनके अंदर फितरत सालिम है, ऊपर जाहिर गुनाहों का ढेर भी हो सकता है लेकिन आपका दिल सलामत है, आगे आएंगी बातें आज के सबक में, आप ना चाहते हुए भी इस किताब की तरफ आ जाएंगे, आपकी पोलराइजेशन होगी। आप कहेंगे हर कीमत पे पढ़ना है, हर कुर्बानी देनी है, होता है तो हो, नुकसान हो तो हो, जो मर्जी हो, मैंने हक को नहीं छोड़ना, आप इधर चले जाएंगे। अब कुछ लोग लायू में ना बिलाखिरा, वो दूसरे एज पे चले जाते हैं। नबी का वजूद या आज के दौर में किताब का आना और उसके मवाके का आम होना, ये सोसाइटी की पोलराइजेशन होती है। इस वक्त आप लोगों की पोलराइजेशन हो रही है। आज तक आपको पता ही नहीं था अपने भाई बहनों में कि चार भाई बहनें हैं, पता नहीं अल्लाह के यहाँ कौन सच्चा है, किसका क्या मुकाम है। अल्लाह ने आपकी आपको अपना मुकाम दिखाना शुरू कर दिया। आजकल आप देख रहे हैं कि भाई रिपेयर हो रही है। 2-3 दिन पहले मैं जब गुजरी तो मेरे साथ कोई था, तो मैंने कहा देखे कि इन दीवारों पे छेद लग रहे हैं ना, अच्छी भली दीवारें थी, अब जाहिर है कि उसमें कोई खराबी होगी, तो आजकल वो देखे वो छेद कर रहे हैं, तो मैंने कहा हो सकता है अब इस पे टाइल लगेंगे, तो आपने देखा कि वो ऐसे ना लोहे के साथ कट 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 लग रहे हैं, कितनी खराब लग रही है। लेकिन ये क्यों कर रहे हैं कि इसके बाद इसके ऊपर एक खूबसूरत सी लेयर आ जाएगी। अब क्या आएगी, वक्त आएगा तो हम भी देखेंगे। मैंने जो मेरे साथ थी साथी, मैंने उन्हें कहा कि यही आजकल आप लोगों के दिलों के, इस वक्त कुरान की आयतें ना ये छेद लगाती हैं। और पिछले सबक को याद कर लें कि शुरू बीच का ईमान बड़ा खट्टा होता है, कोई नहीं मजा आ रहा आपको ईमान की, टेस्ट ऑफ ईमान और स्वीटनेस ऑफ ईमान और हलावत अल ईमान कोई नहीं है। घर घर तो लड़ाइयां, लड़ाइयों से निकल के आते हैं झगड़े हैं, कई सिपाहियां पेश करते हैं कुछ है, ये अभी खट्टा है, अभी आप गेरी हैं। जिस दिन इसके ऊपर एक खूबसूरत लेयर लगनी है ना, फिर वही बात होगी जो सूरत आल इमरान 179 में हम पढ़ चुके, हत्ता यमीज़ल खबीस मिन अत्तय्यिब, यहाँ तक कि तैयब से खबीस अलग हो जाए। ये होगा, ये है वली तस्ग इलैहि अफिदतुल्लज़ीन ला यूमिनून बिल आखिरा। अल्लाह आपको छांट रहा है, खुश हो मत, मुंह बसोर के बैठे मत, रोए धोए बैठे। अल्लाह कहते हैं मैंने छांटना है, तुम्हारी भी जान छुट जाएगी, माशरे को गंदे अनासिर से, खराब चीजों से पाक करने के लिए अल्लाह हक का पैगाम लाता है। इम्तिहान आते हैं, तकलीफें आती हैं, आजमाइशें आती हैं, लेकिन लोग जम जाते हैं। आजकल मैंने एक जगह सीरीज शुरू की हुई है तारीख के वाकयात की, बिलीव मी हर वाकया सुनाने, एक तो जुमे को इधर ही सुनाया था ग्रुप लीडर्स को और उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस में सुनाया, हैरत गुम हो जाती है इंसान की कि मेयार कैसे बदल जाते हैं। कल एक वाक्य सुनाया एक बाप के नाम पे, सैयद बिन अल मुसैब एक ताबई थे, सैयद उल ताबईन कहते हैं उनको, लंबी बात है लेकिन उसका सिर्फ एक्सट्रैक्ट बता देती हूँ तो आपको ये आयत ज्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। वक्त के खलीफा ने उनको कहा कि बैत करो, कोई सियासी इशू था, ये हक नहीं समझते, इन्होंने कहा मैं तुम्हारी बैत नहीं करूंगा, मैं तुम्हें नहीं मानूंगा खलीफा। उन्होंने इन पे टॉर्चर किए, इनको तकलीफ देते सख्त से सख्त, ना माने, अपने कासिदों से कहा कि बताओ कि सैयद बिन मुसैब मार खा खा के कुछ नरम हुए, कहा मार खा के नरम क्या ना, वो तो और सख्त हो गए, मोमिन सख्त होते हैं मुश्किलात में, और फॉर्म होते हैं, कहा कोई और तरीका सोचो, कहने लगे कि सैयदिन बेटी का रिश्ता मांग लें, और ये तो खुशी खुशी मानेंगे बादशाह की बेटी और एक आम बेचारा मौलवी टाइप गालिम। बेटी का बाप हो गया ना जब, तो फिर जो कहेंगे मानेगा, जो हमारे यहाँ होता जी बेटी के बाप की तो इज्जत ही कोई नहीं। खैर ये साजिश हुई। अच्छा जाओ, बेटी बड़ी अच्छी थी, नेक सूरत, पाक सीरत, खूबसूरत, हर लेवदन का कमी भी कोई नहीं बेटी में, तो अच्छी लड़की मिल जाएगी हमें। खैर रिश्ता कौन मांगे, डरते थे लोग दीनदारों से रिश्ते मांगते हुए कि कैसे मांगे, किस मुंह से मांगे, लोगों ने पूछना। अपना एक बड़ा खास बंदा भेजा, उसने जाके सैयद बिन मुसीब से बातें बातें करके उनको बड़ा नरम किया, और फिर बातों ही बातों में कर दिया आपकी बेटी बड़ी हो रही है, क्या ख्याल है वली अहद के साथ इसका निकाह ना कर दे। ये बात सुन के सैयद बिन मुसीब की आंखों में खून उतर आया, कहा आज ये बात की है कल ना करना, खबरदार। उनको पता था वो ऐश कोश में पड़ा हुआ शहजादा मेरी बेटी ही है। खैर उसके बाद इनके ऊपर और सख्ती शुरू हो गई कि ना तो ये बैच में थे कि कहीं मुझे ये थ्रेट ना करें, मैंने किसी तरह अपनी बेटी की शादी कर दूं कहीं, ताकि ना बेटी होगी ना ये मुझे थ्रेट करेंगे। एक दिन क्या हुआ कि इनकी इनके दर से, हल्का दर से होता है, उसमें एक शख्स आता होता था, काफी अरसे से वो नहीं आ रहा, लेकिन एक दिन फिर इनको दिखा। कहा भाई सुनाओ मियाँ तुम किधर थे। कहा बस क्या बताओ, मेरी बीवी पिछले दिनों बीमार थी, मैं उसकी तीमारदारी में लगा रहा, और अब चंद दिन पहले उसका इंतकाल हो गया, तो मैं इस वजह से आपके पास नहीं आ सका। कहते हैं अच्छा, अब बीवी नहीं है तुम्हारे पास। कहा नहीं है। शादी करना चाहते हो। हंसने लगा वो आदमी, कहने लगा मैं अजनबी, फोकट, मेरे पास चंद दिरहम भी नहीं, मुझे अजनबी और मुसाफिर को बीवी कौन देगा, तो मुझे किसने देना है, उसके पास तो कुछ है ही नहीं। कहा अगर मैं तुम्हें अपनी बेटी दे दूं। खैर, कहने लगा आप मुझे दे, कैसे हो सकते, मैं तुम्हें अपनी बेटी देता हूँ। कहा मुझे इससे बढ़ के और क्या चाहिए। वहीं उसको बिठा के चार लोगों को जमा किया, अपनी बेटी के साथ उनका निकाह पढ़ाया। ये शख्स कहते हैं कि मेरे तो पांव खुशी से ना पड़े, लेकिन जब मैं घर आ रहा था तो मेरे दिल में गम क्या था कि मेरे पास तो बिठाने की जगह भी नहीं, करूं क्या, जाके कोई सीधा साधा मामला करूं, ताकि रुख्सती लेनी है जब, तो बेटी के लिए कुछ जगह उसकी बैठने की जगह बने। कहते घर आया, मेरा उस वक्त रोजा था, यानी उनका ये सब कुछ निकाह रोजे में हो हुआ गया। कहते घर आया तो मेरे पास रोटी और ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल था सिर्फ। सोचा कि अच्छा यही खा लेता हूं। इतने में दरवाजा नॉक हुआ, मैंने पूछा कौन, जवाब आया सईद। कहते सईद बिन अल मुसैब के सिवा हर सईद का मैंने सोच लिया कौन सा सईद होगा, इनके बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि सारी जिंदगी इनको मस्जिद से अपने दरसगाह में और मस्जिद से घर के अलावा लोगों ने किसी के दरवाजे पे देखा ही नहीं, ये लोगों के पीछे नहीं फिरते। कहते जब उन्होंने कहा मैं सैयद अल मुसैब हूँ, तो मैं घबरा गया। कहते मैंने दिल में सोचा जरूर इनको अपने इस जज्बाती फैसले पे अफसोस हुआ, और ये अभी सोच से आए के बेटी से मेरा जो निकाह तुम्हारा। मैंने कहा सुनाइए आप कैसे इधर आ गए। कहते मुझे आज एक ख्याल आया, रात हुई तो मैंने सोचा कि तुम आज एक शादीशुदा शख्स हो, और इसके बावजूद तुम बीवी के बगैर रात बसर करो, मुझे ये गवारा नहीं, ये पकड़ो अपनी बीवी। पीछे बेटी थी, उसको कहते हैं कि अंदर धक्का दिया, यानी बेटी को अंदर किया, और बाहर से कुंडी लगा के बाप चला गया। वल्लाह ये सच्चा वाक्य, आप पढ़ना चाहें तो इसका लिंक आपको दे दूंगी। कहते हैं कि वो बीवी जो थी मेरी बेटी उसकी, वो तो शर्म की वजह से गिर के नीचे गिर गई। मैं भी घबरा गया, ये हुआ क्या। खैर कहते घर के पिछले दरवाजे से मैं छत पे चढ़ा, मैंने जाके शोर मचाया, हमसायों को जमा किया। मैंने कहा भाई लोगों मैं तुम्हें गवाह बना के कहता हूँ कि आज सैयद बिन अल मुसैब ने अपनी बेटी का निकाह मुझसे किया है, और अभी वो उसको छोड़ के वो मेरे घर में है। यानी मीन आपको था कि निकाह में ऐलान लाजमी है ना, कि खुदा ना खास्ता कोई इनके साथ उस लड़की को देख के बुरा ना सोचे कि क्या मामला है। तो कहते मैं तुम्हें बता दूं वो मेरी बीवी है। ये बात कहते मैंने कही तो मेरे हमसाए मेरा नाच नहीं जाना, जो भी इसको बनाना संवारना, जो अपने काम ना पूरे कर ले। कहते 3 दिन लगाकर मेरी माँ बहनों ने उस लड़की को अपने पास रखा, और उसके बाद फिर मैं उसके साथ जमा हुआ, और इस तरह से हमारी शादी हो गई। 1 महीना गुजर गया घर में रहे। अब 1 महीने के बाद जब ये वापस गए अपने उस्ताद जो अब उनके सुसर भी थे, तो कहते उस वक्त उनके गिर्द बहुत सारे लोग थे। जब उनके पास बहुत सारे लोगों को देखा तो उन्होंने मुझे कुछ फीलिंग नहीं दी, सलाम दो हाल है कुछ नहीं पूछा। कहते जब सब चले गए तो कहा सुनाओ मियाँ क्या हाल है। तो मैंने कहा बहुत अच्छा हाल है। कहा तुम्हारे साथी का क्या हाल है। बेटी हमारे तो भी पहले पेरे और मुकलावे और जोड़े और अल्लाह की पनाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, ये है वो आज के दौर का जुखरफ जिसने आज हमें इस कुरान से दूर किया हुआ है। कहते मैंने कहा बड़े हाल में। कहा अच्छा अगर तुम्हें सताए ना तो उसके साथ सख्ती करना। ये बाप कह रहा है बेटी के बारे में दामाद को। और ये वाक्या तो इतना ही मैंने कल सुनाया, लेकिन एक और जगह से ये मैंने पढ़ा हुआ है कि जब शादी को एक हफ्ता गुजर गया तो ये तैयार होके जाने लगे, तो बेट जो इनकी बीवी थी उन्होंने पूछा आप किधर जा रहे हैं, तो कहने लगे कि आपके बाप के पास इल्म हासिल करने जा रहा हूँ। तो कहने लगी कि आप फिक्र नहीं करें, जो बाप से इल्म लेने जा रहे हैं वो सारा मैं आपको घर में बैठ के देती हूँ, मैंने अपने बाप से वो सारा इल्म लिया हुआ है। अब आप सोचिए ये बात सुन के, अब मजा तो आपको बड़ा आया, लेकिन आप सोचें कि आज कितने लोग हैं जो ये करते हैं। यही तो वो वक्त है जिसके ऊपर हम पिघलते हैं। ये आज की सोसाइटी का ऐसा बड़ा ताबूत है कि जिस पे पोलराइजेशन हो ही नहीं पा रही। 4, 6, 10 आप जैसे कुरान पढ़े लोग इन चीजों पे जम जाएं। मैं कहती हूँ बाहर वालों को तो छोड़ दीजिए, सिर्फ कुरान से जुड़े हुए लोग छोड़ जाएं तो आप देखिए सोसाइटी में चेंज आएगा। लेकिन वो जुखरुफ अलकौल सर पे सड़ा हुआ है कि जब तक ये कुछ करेंगे नहीं, बेटियां बसेंगी नहीं, शादियां होंगी नहीं, घर नहीं होगा, फिर हले मिले। कल किसी की शादी कैसी बात फैमिली का हुआ है, और शादी में जो कुछ हुआ वो कहते हैं क्या करें मजबूरी, हत्ता कि कहते हैं लड़का भी नहीं कह रहा था ऐसा करें लेकिन मजबूरी है, नहीं पार्टीशन करेंगे तो जगह तंग होगी, हालांकि इतना बड़ा कमरा ला हो लवला कुत ला बिला। फिर जब इन शादियों में बरकत नहीं रहती फिर दुखी होते हैं, तो फिर आके चीखते हैं कि क्या करें हमने ये किया था वो किया। ये दो कश्तियों वाले नहीं जीते, एक कश्ती में पांव रखना पड़ेगा। तो आप मेरे और आपके लिए ये एक गोल्डन चांस है, हमें नहीं पता ये चांस हमारे पास कब तक रहेगा, लेकिन आज खुद को अलग कीजिए। आप अपने आप को अलग कर जाएंगे ना तो आप बच जाएंगे, अल्लाह ताला यही बता रहे हैं। और करें कैसे, अब आपको आयत 140 में तरीकाकार सिखाया जा रहा है। जब सोसाइटी आपको ऐसे तागूती और ऐसे जुखरुफ वाले सिस्टम की तरफ बुलाए तो क्या कहें, अफगैरुल्लाह अब्तगी हकमन, क्या मैं अल्लाह के सिवा कोई और हकम ढूंढूं? क्या तुम कहते हो मैं अल्लाह के तरीके तन निसा में, घर का हकम एक होता है हाकिम, वो अदालतों में होते हैं बड़े लेवल पे, हकम में से पंचायत, यानी क्या मतलब मेरे रब ने मुझे जिंदगी गुजारने का इतना खूबसूरत तरीका सिखा दिया, क्या मैं इसको छोड़कर अब तुम्हारे तरीके ढूंढूं? अब ये टैक्स में ले लीजिए, तो वो मुशरिकीन ने मक्का को कहा जा रहा है कि तुम अल्लाह को छोड़कर 360 बुत बनाए बैठे हो, कहीं लात मनात उज्जा यौक यवूस नसर मैं उनको पूजू, मेरा तो रब बड़ा प्यार है। किस तरह से सर्चिंग क्वेश्चन है ये कि देखो तुम अल्लाह इतने बड़े को छोड़कर तुम दूसरों के पास आते हो। वहु अल्लज़ी अनज़ला अलैकुमुल किताब मुफस्सला, और वो तो वही है जिसने तुम्हारी तरफ एक बड़ी मुफस्सल किताब नाजिल की है। सोचिए जरा क्या ये आयत हमारे लिए नहीं है? अल्लाह मुझे और आपको कह रहा है कि लोगों को कह दो क्या मैं तुम्हें मान लूं हकम, तुम्हारी सोसाइटी के गिरे पड़े निजाम को, घिसे पिटे तरीके को मान लूं और अल्लाह के बताए हुए तरीके छोड़ दूं? उसने मुफस्सल किताब दी, चूमने के लिए तो नहीं दी, सिर्फ इसके तावीज खोलने के लिए तो नहीं दी, ये बरकतों के लिए तो नहीं दी, उसने तो हर हुक्म को मुफस्सल खोल कर बयान कर दिया। आज कितने लोग हैं जो इस किताब को इस एंगल से पढ़ते हैं, ये मुफस्सल तफसील वाली, आप हैरान होते होंगे ना अहकामात सुनते हुए, इतने भरी इशू अल्लाह ने खोल दिए। पीछे भी आप पढ़ चुके हैं, आगे सूरतों में पढ़ते जाएंगे, सूरत माईदा में कितने हुक्म गुजरे। आप बताएं अगर ये किताब सिर्फ चूमने चाटने वाली होती तो क्या ये किताब हमारे लिए इतनी गहराई में जाके पढ़ने की इसकी कोई जरूरत थी? तो ये जवाब है जब सोसाइटी आपको पुकारे, जब आपका खानदान आपका मुआशरा आपको पुकारे। जिन्होंने मुझे ये बात कही मैंने उन्हें कहा कि देखें सीधी सी बात है, आप क्यों दुखी होते हैं, आप मत जाएं, आप अनाउंस कर दें कि हमने नहीं जाना ऐसी शादियों में। कहने लगी मुंह बांध के बैठ, निकाब में गए निकाब, आप कह दें कि जहां ये नहीं है खत्म खत्म होगी बात, और कोई पूछे क्यों तो कह दो आप गैर अल्लाह ही अब तक ही हकम, खुश हो ले पोलराइजेशन हो जाए। सिर्फ वो लोग जो दिल से इन चीजों को पसंद करते हैं, वो अल्लाह ही अगर वो ऐसे रस्मों रिवाज में बैठे रहें और सब दिल से बुरा समझने ले उठ जाए ना, तो ये 4 दिन में सारे खेल खत्म हो जाएंगे। ये हम जैसे बीच के डिचकू डिचकू जो लोग हैं ना, कुरान भी पढ़ते हैं और वहां जाके मुंह गूंगे बैठे रहते हैं और खाने खाने पे आ जाते हैं, पीने पे आ जाते हैं कि चलो भाई मजबूरी है ये बेटी का मामला। मैंने कहा ये आप जैसे लोग लोगों को मौका देते हैं, उनको क्या पता आप खुशी खुशी से बैठे हैं या रो के बैठे हैं, बीठे बैठे हैं कैसे बैठे हैं। आप उठे बोले करें जाए सॉरी खुदा हाफिज, कोई ऐलान भी ना करें, बस घर वाले को बता दे मैं जा रही हूं, उनको पता चल जाए कि ये सूट नहीं करती, मुझे ये सूट नहीं करती। की जगह आई डोंट बार के अंदर बैठे। हम में से कोई सोचता है किसी नाइट क्लब में से थोड़ी देर से गुजरे, वहां से गुजरते हुए भी शर्म आएगी कि कहीं कोई कहे ना कि अंदर से निकले हैं। तो पर आप लोगों के साथ इट डजेंट सूट्स मी, ये मेरे काबिल नहीं है जगह, ये सोफा है, ये पाव काउच है, ये क्या है, बट आई डोंट थिंक सो केस फॉर मी। मैंने ये जुमला बड़े प्यार से अपनी अपनी फैमिली के एक लोगों को बताया, रियली बिलीव मी करें कि ये अगर टॉर्चर्स नहीं देंगे आप लोगों को तो ये पोलराइजेशन नहीं होगी, ये फिर वही चूचू की मलियां और बीच में चूचू के मुरब्बे बने फिर रहे हैं हम आज। इसलिए फिर हम यहाँ आके रोते हैं और वहां जाके हंसते, और वो बाद में हमें बातें करते हैं, हम घर आके उनको बातें करते हैं, सीधी सी बात है। तो फिर मैंने नाम दिया एक दो स्कॉलर्स है हमारे हमारी फैमिली के, मैंने कहा वो नहीं देखा लोगों ने उनको बुरा कहा, लोग उनको कार्ड ही नहीं भेजते, उनको पता वो नहीं आते, सीधी सी बात है, पता चल गया भाई ये नहीं आएंगे, वो आगे पीछे जाके मिल मिला के आ जाते, रिश्तेदारी भी रख लो तो गलत ना करो। तो हक को हक समझना एक बात है, हक को हक समझकर उसका इजहार करना अगला दर्जा है, और हक को हक समझकर उसके इजहार पे जम जाना इसका नाम इस्तकामत है। ये तो आप हामीम सजदा में इंशाल्लाह जिंदगी रही पहुंचेंगे तो समझेंगे, लेकिन ये जुरत पैदा कीजिए कि आप गैर अल्लाह अब्तगी हकमन, मेरे से नहीं कोई और हकम बनता, मुझे अपने रब पे मैं बहुत राजी हूँ। जैसे शादी हुई आपको, मैं शोहर को छोड़कर दूसरा ढूंढू, क्या बातें करते हो, अब ये बच्चे बुरे हैं कि आप दूसरों के बच्चे लो, नहीं तो अल्लाह तो बड़ी जात है, वो तो बहुत प्यारी बात है, उसने किताब दी, इस किताब को गाइडलाइन बनाओ। वहुवल्लज़ी अनज़ला इलैकुमुल किताब मुफस्सला वल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब, और वो लोग जिनको हमने किताब दी, यालमून अन्नहु मुनज़्ज़लुम मिन रब्बिक बिल हक, वो जानते हैं कि ये किताब तेरे रब की तरफ से हक के साथ नाजिल हुई है, लिहाजा फला तकूनन्न मिनल मुमतरीन, बस तुम शक करने वालों में ना हो जाओ। ये है कॉन्फिडेंस, ज़ुख़रुफ़ल क़ौली ग़ुरूरा का ये जवाब है। आप और मैं कुरान सीखने सिखाने वालों को ये कॉन्फिडेंस हो, यस मेरे पास बेहतरीन किताब है, यस इकोनॉमिक्स है, मैं तुम्हारे सिस्टम पे क्यों जाऊं। और ये जिस दिन हो गया आप देखिए मुसलमान दोबारा अरूज पे आ जाएंगे, फिर वो सारा जोश आपको दोबारा दिखेगा। और सहाबा को वल्लाही यही यकीन था, किस तरह वो यकीन के साथ पड़क पहुंचते थे, क्योंकि उनको पता था कि हम जो करते हैं वो बिल्कुल सही करते हैं, इतना यकीन था उनको। वाकया सुनाने लग जाऊं, चूंकि आजकल हिस्ट्री पढ़ रही हूं ना तो वो सारे वाकया दिमाग में आते हैं, ये फर्क था हमारे और सहाबा के बीच में, वो जम जाते थे हम पिघल जाते हैं, हमें यकीन भी है ना कि हम हक पे, हम फिर भी नहीं मनवा पाते, चार लोगों का रिएक्शन देख के, छोड़िए एक का रिएक्शन देख के हम अपना कानून बदलते, चले आप नहीं चाहते तो हम भी नहीं ये करते। अल्लाह कहते नहीं, आपके रब की बात तो सच्चाई और अदल पर मबनी होने के एतबार से दर्जे कमाल तक पहुंच चुकी है। अल्लाह अकबर, दो बातें इसमें, सिदकन व अदला, तेरे रब की बात सच्ची है, सच है कायनात में, कायनात का सबसे बड़ा सच अल्लाह की जात है, मानते हैं, और तमत पूरी है, अल्लाह ने अधूरी शरीयत नहीं दी। सूरत माईदा में आप पढ़ चुके हैं आयत 3 में, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम वअतममतु अलैकुम नेमती वरदीतु लकुम अल इस्लाम दीना, आज मैंने तुम पर तुम्हारा दीन पूरा किया और तुम पर अपनी नेमत पूरी की और इस्लाम को तुम्हारे लिए पसंद किया। ये है अल्लाह की बात, सिद्क वाली, सच्ची और अदल वाली। अब देखिए कि अल्लाह सुबहाना ताला की बात सच्ची भी है और अदल वाली है, बैलेंस उस है। आप कह सकते हैं कि सिद्क में अकीदा लिख ले, ला इलाहा इल्लल्लाह, सच्चा माबूद, सच्चा खुदा, मोहम्मद रसूलुल्लाह, सच्चा रसूल, और अदला में शरीयत है, नाप तोल के हिस्से दे दिए, बेटी का ये, बेटे का ये, माँ का ये हक, बाप का ये हक, ये नमाजों का वक्त है, ये हकूकुल इबाद का वक्त है, ये सब कुछ करते रहो, अल्लाह ने तुम्हें बड़ी नपीतुली शरीयत दी है, और ला मुबद्दिल ली कलिमाती ही, कोई उसकी बातों को बदलने वाला ही नहीं है। कोई है इसको पढ़ते ऐसे आ रहा है कोई माई का लाल जो अल्लाह की बातों को बदले? वह हुवा समीउल अलीम, वो सब कुछ सुनने और जानने वाला है। उसकी बात को मान के तो देखो कितनी सच्ची और खरी बातें है, सच तभी कड़वा लगता है। कुछ लोगों को अल्लाह की बातें कड़वी लगती हैं क्योंकि कड़वा होता है सच, नेचुरल चीज लेंगे तो थोड़ी सी कड़वाहट होगी, अंदर पानी और चीनी घोल के पिया होगा। इसलिए अल्लाह सुबहान तआला बताते हैं कि देखो, अल्लाह की बातें अगर बहुत तुम्हें जुखरुफ वाली नहीं भी लगती, बहुत उसमें तुम्हें प्रोटोकॉल और ऐसी चीजें नहीं भी मिल रही, लेकिन याद रखो ये हेल्दी है, ये ऑर्गेनिक है, इसमें तुम्हारी जिंदगी की खुशी है। यकीन करे, दिल जाता है बंदे बंदे को पकड़ के झंझोड़ के बता दो कि लोगों, असल खूबसूरती सच्चे दीन पे अमल करने में, जो इसमें मजे हैं वो दूसरों में नहीं है। बाकी सिर्फ बातें हैं, तकल्लुफात हैं, ऊपर की बातें हैं, दूसरों के लिए जीने वाले, दूसरों को खुश रखने वाले कभी भी खुद खुश नहीं रहते। कई कॉमेडियन खुद खुश, कई आर्टिस्ट होते हैं वो डिप्रेशन में एंड पे चले जाते हैं। ये क्या हुआ? ये तो दूसरों को खुश रखते थे, आज क्या हुआ? क्योंकि ये खुद सच्चे सच से दूर थे। तो असल जिंदगी में हैरान होती हूँ कि जब लोगों को 40, 50, 60 साल की उम्र का होने पे भी इस किताब से दूर पाऊं और इसको समझे बगैर आते हैं। अभी रिसेंट जो मौक इत्तफाक हुआ उम्रे का, साथ ही मिलते हैं वहां औरतें मर्द, औरतों में हम लोग रहते हैं ऑफकोर्स। यकीन करें, मैं देखती थी कि सीधी सी औरतें इतनी बेचारी अल्लाह से मोहब्बत करने वाली हैं, लेकिन उनको बाज दफा सही तौर पे नमाज भी नहीं पढ़नी आती, वजू नहीं करना आता, बैठी बातें कर रही हैं, अपने लिबास से बेनियाज हैं, कुछ नहीं पता। मैं सोचती थी खड़े होकर रस्तों में गुजरते हुए, मैं कहती थी इतनी जिंदगी गुजरी, इसको मक्का आने का कितना शौक है, इसको मदीना से कितनी मोहब्बत है, ये घंटों खड़ी है कि मैंने रोजे की जाली को चूमना है, लेकिन इसको ये नहीं पता कि ये किताब इसके घर में है। कितनी भी अल्लाह की किताब, सिद्ध का मुआदला, और जिस रसूल की कब्र पे आके ये खड़ी है, उस रसूल ने इस किताब को पहुंचाने में 22.5 साल लगा दिए। तुम इसको तो पढ़ के देखो, वो मोहब्बत वल्लाही जो यहां मिल सकती है इस किताब से, वो वहां जाके तब मिलेगी जब ये बात होगी, लेकिन जब यहां नहीं है तो वहां भी फेरे ही गिनते हैं, इतने कर लिए, इतने तवाफ, इतने चक्कर, और बाज हो सकता है कि उसमें नमाज भी ठीक ना पड़ी हो। अल्लाह से दुआ कीजिए ये किताब आम हो जाए, अल्लाह ताला हमें क्यास से निकालकर हकीकत पे ले आए। ये वो चीज है कि जिसमें जिंदगी का जाब्ता है आता। आज उम्मत मुस्लिमा इसको पीछे डालने की सजा भुगत रही है। अब आगे देखिए कि इस किताब से इनहिराफ, इससे मुंह फेरने का नुकसान, आयत 116 आपके साथ, जहन के साथ साथ चल रही है सारी आयतें। ऐसे नहीं लगता कि एक चेन है, ऐसे लगता है मुझे तो जैसे कुंडे से कुंडा डला हुआ है, लड़ी पे लड़ी, अब यहां तक हम पहुंच गए कि अल्लाह ने तो इतना प्यारी शरीयत दी, खूबसूरत है, पीछे हमने पढ़ लिया के जुखरुफल को एक मशवरा देते हैं, वो क्या? आयत 116, वइन तुती अक्सर मन फिल अर्दी, और अगर तुम कहना मानोगे अक्सरियत का जो जमीन में है, दूसरे लफ्जों में अगर तुम पैरवी करोगे जमीन में बसने वालों की अक्सरियत की, क्या लिख सकते हैं इसके नीचे आप जुमला? अगर तुम कहोगे मेजॉरिटी इज द अथॉरिटी, लोग कहते हैं ना अक्सरियत के पीछे चलो, लोगों को देखो लोग क्या कहते हैं, लोग क्या सोचते हैं, तो अल्लाह कहते हैं अगर तुम अक्सर के पीछे चलोगे तो युदिल्लू का अनसबीलिल्लाह, वो तुम्हें अल्लाह के रास्ते से लाजिमन गुमराह करके रखेंगे। इसको जरा आप अपने हाथ से लिखेंगे, अपने नोट्स में जगह छोड़ दें, खूबसूरत सा मोटा कैलीग्राफी के साथ अपने इस आयत को लिखना भी है और याद करने की कोशिश करें। ये हम में से बहुत सारे के बहुत सारों के दुखों, 13 पढ़ लें क्योंकि बदरी सहाबा 313 थे, वजीफा बना लें एक, वल्लाही ऐसा कुछ ना करें। लेकिन इस पे अल्लाह, ये किसने कहा? अगर लफ्जी तर्जमा देखे, वाह और इन अगर तुती तू इतात करेगा अक्सर अक्सरियत की, मन जो फिल अर्दी जमीन में है, जो दिल लो का तुझे बहका देंगे अनसबील अल्लाह के रास्ते से, मेरी तफसीर की तो जरूरत ही कोई नहीं है। इतनी क्लियर बात है कि अगर तुम अक्सरियत के पीछे चलोगे तो वो तुम्हें क्या करेंगे, सीधे रास्ते से भटका देंगे। अब बताइए किधर है मेजोरिटी इज अथॉरिटी, और ये आयत जमहूरियत का रद्द भी है, डेमोक्रेसी, कहते हैं मेजोरिटी के पीछे चलो, ज्यादा की राय देखो। अलामा इकबाल क्या कहते थे कि जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं तोला नहीं करते, गिनते हैं ना 1 2 3, गिनते तोलते कब है कि एक आलिम का वोट है और एक जाहिल का वोट है। एक ही डिब्बे में दोनों वोट जाते हैं, जाहिल जिसको 100 रुपया भी दे के आप खरीद लेंगे, और एक आलिम जिसकी बात एक बात हजारों की होगी उसकी बात को एक बराबर रखते हैं। तो इस्लाम क्या कहता है कि दुनिया में अक्सरियत बातिल परस्तों की रही है। अगर आप दौरे सहाबा को देखें, दौरे सहाबा में सहाबा के रदाद दुनिया की पूरी आबादी के तनाजर में देखें तो कितनी थी। चले आप इमेजिनेशन में लाएं, ये 2014 ही ले लें, दुनिया का कोई कंजस्टेड मुल्क जहन में ले आए, यहां सारे सहाबा भी आ जाए, क्या है? हर लाख बंदों के मुकाबले में शायद एक सहाबी भी नहीं है। ऐसे ही है ना, आप कहते हैं कि जब अल्लाह के नबी मक्का से मदीना हिजरत करके आए 100 कुछ सहाबी थे, ठीक है, जब आप दुनिया से गए 1.5 लाख लोग थे टोटल दुनिया में मुसलमान में एक भी नहीं है, लेकिन उन्होंने जो चेंज पैदा किया, और वो जो दौर था खैरु कर्न करनी, सहाबा का दौर गोल्डन टाइम पीरियड, अबू बकर और उमर का जो दौर था वो किस लिए था कि उन्होंने अल्लाह की बात मानी। आज मुसलमान उससे कई हजार गुना ज्यादा है, लेकिन आज उनकी हैसियत पानी पे फैले हुए तिनकों वाली क्यों है? क्योंकि आज हमने अल्लाह और उसके रसूल के असूलों को जिंदगी का स्लोगन नहीं बनाया, वो लैंडमार्क्स नहीं है हमारे लिए, हमने उन हदों को नहीं माना। आज हम मानते हैं कि हम मुसलमान हैं, लेकिन हम मुसलमान एयरलाइंस में शराब पेश करते हैं, हमारी मुसलमान एयरलाइंस की टांगें नंगी होती हैं, क्योंकि लोगों को अट्रैक्ट करो, अक्सरियत को खुश रखो, अदालत चलेगी। इस तरह एक बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस हुआ, यानी कभी भी किसी को ट्रैवल करना हो, और इंतहाई अच्छी उनकी एयरलाइन सर्विस और बहुत मारूफ भी नहीं है, तो मैंने सोचा कि इनकी भी तो चल रही है। फिर ऐसे ही बात हुई, बात में उनके काउंटर पे हमने उनकी तारीफ की कि हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा आपकी एयरलाइन के साथ। तो उसने कहा यस, दे डोंट सर्व शराब, शराब नहीं है, नमाज की जगह, आप नमाज पढ़ें। इतना पोलाइट स्टाफ की कमी देखा है, और इतना क्लीन कि जमीन पे भी सजदा करें तो मजा, इतना क्लीन जहाज, और सब कुछ ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा उनके साथ रहा। वो अगर के अक्सरियत शराब मांगती है, अब क्या करें, घर से पी आए जिन्होंने पीनी है, और फुल फ्लाइट ये भी नहीं कि खाली है, ये धोखा है कि अक्सरियत देकर कारोबार नहीं चलेगा। शराब निकाल दी स्टोर से तो सेल खत्म हो जाएगी, लॉटो निकाल दी। अल्लाह कहता है तुम अल्लाह की बात मानो, फिर देखो तुम्हारी बात लोग मानेंगे, लेकिन हम क्या करते हैं अल्लाह देख सकता है। आज भी आप देखिए कि लोग पसंद नहीं करते वो चीजें जो अमूमन सामने पेश की जाती हैं, लेकिन सिर्फ लोगों के पीछे चलते हुए मानते हैं। अल्लाह कहता है लोगों के पीछे चलना तुम्हें क्यों बहका देगा, क्योंकि नहीं ये गुमान करते, सॉरी नहीं ये पैरवी करते मगर गुमान की। हक के मुकाबले में गुमान, गुमान समझते क्या होते हैं, थॉट्स ओनली, यानी एक होती है जैसे मिसाल है कि रियलिटी है, और एक उसके ख्याल में अजम्पशन, ये जो यकर सुन है ना ये अजम्पशन है, सिर्फ अजम्पशंस पे चलते हैं। मैं मिसाल देती हूँ आपको, फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या होते हैं, मसलन आप कह सकते हैं कि इस वक्त टाइम क्या हुआ है, घड़ी देख के मैं कहूंगी 12:15 और 21 सेकेंड, ये मैंने क्यों देखा, घड़ी पे देखा, ये क्या है, हक। डेफिनेट आप जाके दुनिया की सारी घड़ियां चेक कर लेंगे तो यही होंगी, तो मैं कहूंगी मेरा ख्याल है 12 बजने वाले हैं, मुझे लगता है कि 12:30 होंगे, ये क्या है, अजम्पशन। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ने तो सिदकम वो अदलन पेश की, लेकिन लोग अजम्पशंस पे चलते हैं, एज्यूम किया हुआ है क्या औरत मर्द बराबर होंगे तो ये बड़ी तरक्की है, औरतें कम कपड़े पहनेंगी तो बहुत इज्जत है, शराब पियेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, दिस एंड दिस, लोग एजम्पशन पे, व इन हुम ला यखरुसून, और नहीं वो मगर सिर्फ अंदाजे मुकर्रर करते हैं। अगर आप इधर एक लाइन लगा के लिखे आज हमारी मुस्लिम सोसाइटी की एजम्पशंस क्या हैं, हम दूसरों की तो बातें नहीं करते, मैं तो सिर्फ आपको पढ़ा रही हूं, मुझे ये कोई परवाह नहीं है कि बाहर की दुनिया क्या कर रही है, लेकिन आज हमारे कल्चर, चले इंडो पाक कल्चर ही की बात कर ले, हमारी अजम्पशंस क्या हैं, कुछ आप शेयर करें। अल्लाह ने तो हक बात बता दी ना, वो तो सीधी कुरान और सुन्नत में। हमारे सवाल समझ आया जी? इशरत आप बताइए। जी शाबाश। यानी एक अजम्पशन क्या है कि हम निकाब में थर्ड क्लास लगेंगे, बेटी स्काफ पहनेगी रिश्ता नहीं होगा, अजम्पशन। सास को कड़े दे दो इज्जत होगी, अजम्पशन। जहेज दो, अजम्पशन। राडो की घड़ी पाके दामाद आपके घुटने दबाएगा, अजम्पशंस हैं। ये सारी अजम्पशंस हैं। अल्लाह क्या कहता है? वो सैयद बिन मुसैब और उनकी बेटी ज्यादा खुश रही होगी। बाज़ औक़ात कुछ नहीं करते माँ बाप तो बेटियां ज्यादा इज्जत पाती हैं। देखिए ना, आप एक चीज किसी को कोई खुद लेता है तो उसकी और इज्जत होती है, और आप उसको कहते हैं अच्छा ये एक घड़ी ले लो लेकिन मेरी बेटी को खुश रखना, ये इस पलंग भी मैं तुम्हें देती हूँ इस पे सोया करो, मेरी बेटी को ताना ना देना, गाड़ी की भी चाबी दे दूंगी, जरा पैसे हो जाए ये हो जाए। तो ये तो मतलब ये कि बेटी में डिफेक्ट है और आप चीजों से उसको खड़ा कर रहे हैं। तो हमारी सोसाइटी में ऐसी अजम्पशंस हैं। कोई और अजम्पशन लीजिए इस टॉपिक से अलावा। जी हाँ जी शाबाश। गो विद द फ्लो, जो सब करे वही करो, फिर इज्जत चाहिए। और अल्लाह क्या कहता है? अगेंस्ट द विंड, अपोजिट द विंड। कभी दिल चाहता है कि अल्लाह ताला हमें उस सहाबा के दौर में ले जाए जो वो लोग थे। जब आपको भी थोड़ी सी तस्वीरें दिखाई और जब उन जगहों पे जाना पड़ा ना, गए ऑफ कोर्स हम गए देखने कुछ, तो मेरे जहन में वो जगह नहीं थी, मैं वो किरदार देख रही थी। मैं सोच रही थी कि हम होते तो आते नबी के साथ बदर तक, आपको तो अच्छा खासा फासला है, 146 किलोमीटर लगा, 146। मेरा हले अच्छी गाड़ी में भी मुझे लगता है हमें मोर देन 1 आवर लगा। तो मैं सोचती थी अगर हम होते, अल्लाह के नबी ने बदर के मौके पे कोई ये नहीं कहा था सब चलो, ये ऐसी एक तो ना आपको मंडे को बुलाना, वो नहीं था। लेकिन सहाबा जो गए, और क्या उनके ईमान थे जो वहां गए, और कहाँ खड़े होकर उन्होंने क्या जंगें लड़ी, और जो उनके मशहूर, ये सिर्फ तब होता है जब एक चीज मिशन बन चुकी होती है। अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐसे लोग जो अटकलें गुजार रहे हैं ना कि कामयाबी का मेयार है, एमए कर लो, मास्टर कर लो, कामयाब हो जाओगे, जॉब लड़की करेगी तो बहुत अच्छी हो जाएगी, घर में दो लोग कमाएंगे तो बहुत फलाह होगी, यत्तबिउन। आप अब खुद सोच के लिखिएगा, अगर वाकई आप अंदर से खुरचना चाहते हैं ना इन चीजों को, तो लिखिए कौन सी फी जमाना मारूफ बातें हैं जो इस्लाम के कवानीन से टकराती हैं। फिर अल्लाह ताला कमेंट देते हैं आगे, 117 आयत, इन्ना रब्बक हुवा आलमु मन युदिल्लु अन सबीलिही। बेशक आपका रब खूब और वह हुवा आलमु बिल मुहतदीन, वो हिदायत वालों को भी खूब जानता है। आप देख रहे हैं पोलराइजेशन चल रही है पूरे सबक में, अल्लाह को हिदायत वालों का भी पता है और भटकों का भी पता है। आप कहेंगे इसका तो हमें भी पता है, नहीं हमें नहीं पता। हमें को पूछे अच्छा बताओ तुम्हारी नजर में हिदायत वाला कौन है, आप कहेंगे हम जो कुरान पढ़ते हैं, भटके हुए कौन है जो नहीं आते, नहीं जरूरी नहीं है। अल्लाह को दिल के अंदर का भी पता है, हम में से भी अल्लाह ना करे कोई ऐसा भी यहाँ के बैठ गया होगा जिसके अंदर हिदायत कोई नहीं है, तलब कोई नहीं है, बस आ गया लोगों के साथ। असल तलब, असल कैसा होता है बंदा जब वो खुद उस चीज पे आके पहुंच जाए। देखिए एक चीज होती है, हालात साजगार हो गए, आप आना शुरू हो गए, किसी ने राइड दे दिया आप आ गए, जिस दिन राइड ना दी बैठ गए। एक तो नहीं इम्पॉसिबल, वो तो और बात है, जब हालात ना साजगार हो फिर बंदा उस काम को करे, वो उसका अपना काम होता है। वरना तो ये हमें अल्लाह ताला थोड़े बेनिफिट ऑफ डाउट्स भी दे रहा है, कोई ऐसे ही हमें लेके आ जाता, चलो ना बैठो, मैं भी मुझे भी ले ले, ऐसे ही आके बैठ गई। जिस दिन मैं अपने दिल से बोलूंगी ना, मैं कहूंगी कि मुझे तो ये काम करना ही करना है, वो मेरा काम होगा। तो खुद से पूछिए, अल्लाह को तो पता है कि कौन सीधे रास्ते पे तो कौन भटका हुआ है, तो अल्लाह जी मुझे बताएं कि मैं किधर हूं, ये अब यहां अल्लाह से कलाम कर लें, अल्लाह ताला मैं भटकी में हूं कि अल्लाह ताला मैं हिदायत पे हूं, अल्लाह ताला मुझे गाइड करें। देखिए बहुत सोचा करें अपने बारे में, बहुत बातें किया करें अपने रब से। आपका अल्लाह से ताल्लुक जब तक लाइवली नहीं होगा, वन ऑन वन बेस पे नहीं होगा और लाइव नहीं होगा, जैसे ये वाइबर और व्हाट्सएप और ये कट 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 कट, यहां बैठे आप सारी दुनिया के लोगों को एक मैसेज कर सकते हैं ना, जब तक अल्लाह के साथ होगा आप हिदायत पे नहीं है, बस आए हुए हैं, पकड़ा हुआ है किसी ने पीछे से सहारा दिया हुआ है। फौरन अल्लाह जी क्या करूं, अल्लाह जी ये क्यों हुआ, ये ठोकर क्यों लगी, ये चोट क्यों लगी, ये बच्चे ने ऐसे क्यों किया, अच्छा मैं चली जाऊं, अल्लाह जी अच्छा मैं अच्छी लग रही हूं, मैं 24 घंटे का व्हाट्सएप है ये अल्लाह का ताल्लुक, फिर आपको पता चलेगा। और कुछ चीजों में आपका दिल आपको बताएगा कि अल्लाह मैं 100% इसमें सच्ची हूं। कोई आप ऐसी बात जब सुनेंगे सारी दुनिया को भी, या चले इस क्लासरूम के किसी को भी नहीं पता ना, तो आप कहेंगे अल्लाह तुझे पता है मैं इस बात में कितनी अमल करती हूँ, मैं इसमें कितनी पक्की हूँ, अल्लाह मुझे पता है और तुझे भी पता है, इस पे तो मुझे पता है मुझे कल 100 नंबर मिलने हैं। और कोई आयत ऐसी भी आती होगी, कोई बात आती होगी, आप अल्लाह से नजरें छुपाएंगे, अल्लाह तुझे तो पता है मैं क्या करूं, बस मेरे मेरी निकाल दे ये बात, होता कि नहीं होता, डायरेक्ट अल्लाह से बात करके अपनी बुराइयों और अपनी खूबियों को अलग अलग छांट देखेंगे। आपको जो शुरू से चला था ना, जिसको आप कहना चाहिए कि अल्लाह ने बात हमें सिखा दी, खुलासा करती हूँ, अल्लाह ताला ने हिदायत का दरवाजा खोला, जो लोग शुरू में दरवाजा बंद कर देते हैं अल्लाह कहते हैं उनको सब कुछ दिखा दोगे, मुर्दे भी बातें कर ले उनसे जाके, जो भी कर दो वो नहीं मानेंगे, क्योंकि उनके पास शैतान है जो आके विस्परें करते हैं, जो नबियों के खिलाफ बातें करते हैं, आज के दौर में अकेले दीनदारों के खिलाफ बातें करते हैं। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने ज़ुख़रुफ़ अल-क़ौल की बात करके हमें थोड़ी सी उनकी मेथडोलॉजी सिखा दी कि किस तरह से वो ये सारे काम करते हैं। फिर सिदकन व अदलन करके अल्लाह की सच्ची बात बता के उसके ऑपोजिट लोगों के यखरसून और उनके गुमान दिखा दिए, और तरीका भी सिखा दिया कि जब लोग तुम्हें अल्लाह से मुख्तलिफ, अल्लाह ताला की बात से जरा खिलाफ बात पे लेके आए तो कह दो कि मैं अल्लाह के सिवा कोई हकम नहीं मानना चाहता। ठीक है, अब ये सब कुछ करके ना, अब आयत 118 से अमली मिसाल है, यानी आप लिख लीजिए 118 आयत ज़ुख़रुफ़ अल-क़ौली गुरूरा की एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दी जा रही है। थोड़ा सा मैं आपको इसका बैकग्राउंड बता देती हूँ। पीछे आप सूरत मायदा में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ चुके कि इस्लामी तौर पे ज़बीहा के बगैर गोश्त को खाना जो था इस्लाम में अलाउ नहीं है, और वो दो शर्तें भी आपको भी याद हो गई होंगी कि अल्लाह का नाम लिया जाए और उसके ऊपर उसका जिस्म से खून निकाला जाए, ये बात याद है ना। अब मुसलमान इसी तरह करते थे, बहुत अच्छी बात है, बिस्मिल्लाह क्यों पढ़े, क्योंकि अल्लाह ताला से परमिशन ले रहे हैं कि अल्लाह प्लीज कैन आई टेक दिस एनिमल, ठीक है ना, जैसे आप किसी की भी चीज लेने से पहले उससे पूछते हैं। और खून क्यों निकाले, क्योंकि उसमें गंदगी थी, अल्लाह ने कहा निकाल दो। मुसलमान जब ऐसा करते थे तो कुफार ने एक शोशा छोड़ा, अब सोचिएगा, पहले अगली सारी आयतों में ये बात आपको क्लियर हो जाएगी। उन्होंने कहा देखो ये मुसलमान कितने बेवकूफ है, इसको खुद जिबा करते हैं यानी स्लॉटर करते हैं, इसको तो खा लेते हैं कि खून निकाला उसको जिबा किया, और जो जानवर खुद मर जाता है गोया कि उसको अल्लाह ने मारा, जिस जानवर को अल्लाह मार दे उसको नहीं खाते, बात समझे, यानी ये इतना बड़ा ज़ुख़रुफ़ अल-क़ौल है कि बंदा थोड़ा सा हिल जाए कि देखो देखो ये बहुत नेक बनते हैं, अल्लाह जिस जानवर को मार रहा है उसको तो नहीं खा रहे, और खुद जो मार के खा रहे हैं उसको खा रहे हैं। तो अल्लाह ताला इसका तذکرہ अगली चंद आयतों में करते हैं, इनकी बातों में मत आओ, फकुलू मिम्मा ज़ुकिरा इस्मुल्लाहि अलैहि इन कुंतुम बिआयातिही मुमिनीन, बस खाओ इन चीजों में से जिन पर अल्लाह का नाम, इसकी आयात पर ही खाओ, तुम क्यों इनकी बातों में आके परेशान होते हो, अल्लाह का नाम लिया है तो खा लो। अरब लोगों ने अपने जाहिलाना नजरियात और तवहमात की वजह से, पीछे पढ़ा है आपने बहीरा साहिबा हाम, पढ़ा ना, आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है, तो गोया के अल्लाह ताला ने कहा कि ये नहीं खाते तुम खाओ, ठीक है। फिर आयत 119 में उसी को कंटिन्यू किया, वमालकुम, और क्या है तुमको भाई, वाई यू विल नॉट, ये मुराद है, हैरत का अंदाज है, वमा लकुम अल्ला ताकुलू मिम्मा ज़ुकिर इस्मुल्लाहि अलैहि, और तुम्हें क्या हो गया कि तुम नहीं खाते वो चीजें जिन पर अल्लाह का नाम लिया गया, वही बहीरा साहिबा वसीला और हाम, सूरत मायदा की आयत 103 में हम पढ़ चुके, उनकी तरफ इशारा है कि मन घड़त अकीदे हैं उनके, हाम को ना खाओ, बहीरा को ना खाओ, साहिबा को ना खाओ, ये पहुंचा हुआ है, ये 10 बच्चों का बाप बन गया ऊंट, तो इसको ना खाओ, अल्लाह ने ऐसी कोई पाबंदियां नहीं लगाई, हलाल जानवरों को अल्लाह का नाम लेकर जिबा करो और बिला कराहत खाओ। क्योंकि वक़द फ़स्सल लकुम मा कर चुका है तुम्हारे लिए इन चीजों की इन चीजों को जो हराम की गई तुम पर। कहाँ बयान किया अल्लाह ने? सूरत मायदा के शुरू में भी पढ़ा, चार चीजें पढ़ी ना, मईत वद्दम वलहमल खिंजीर, लेकिन इसकी डिटेल हम पढ़ेंगे सूरत नहल में। सूरत नहल में डिटेल से ये चीजें आएंगी। और ये याद करिए, ये लिख लीजिए कि सूरत नहल सूरत अल नाम से पहले नाजिल हुई थी, इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ आके कहा कि मैंने बयान कर दी। अब तरतीब में तो बाद में आ रही है, लेकिन नजूल में सूरत नहल नाजिल हो चुकी थी। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जब मैंने क्लियर कट बता दिए कि फलां चीजें हराम है फलां हराम है, तो फिर तुम उनको छोड़ के बाकी सब चीजें खाओ। हाँ, मगर इल्ला मस्तुरिर तुम इलेही, सिवाय इस चीज के कि तुम मजबूर हो जाओ इसके खाने के लिए, गुंजाइश इस तरार में, भूख से जान निकल रही हो तो फिर इतना से गुजारा हो जाए, जान बच जाए, उतना तुम खा सकते हो। ये इस्लाम का हुसन है, मुबाह हो जाती हैं चीजें मजबूरियों के और मजबूरी और ऐसे वक्त में जबकि कोई आपको किसी चीज पे मजबूर कर दे। फिर अल्लाह ताला कहते हैं, वह इन्ना कसीरन लयुदिल्लू नबी अहवा इहिम बगैर इल्म, और यकीनन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बगैर इल्म के अपनी ख्वाहिशात की बिना पर लोगों को गुमराह करते फिरते हैं। इल्म होता कोई नहीं, बस ख्वाहिशात, चूंकि ये है चूंकि ये है, कोई बात नहीं। इन्ना रब्बक हुआ आलम बिल मोतदीन, यकीनन आपका रब इन हद से बढ़ने वालों को खूब जानता है। क्या पता चला? बात वाज़ेह है ना कि इनकी बातों में आकर हराम को हलाल नहीं करना और हलाल को हराम नहीं करना। देखिए दोनों चीजों को लिखे से रुक भी नहीं सकते, ये बात है दोनों में। बास लोग, ये बाबा जी की कब्र का बकरा है तो इसको नहीं खाना, ये गाय अब्दुल कादर जिलानी की कब्र की है तो इसको नहीं खाना, दिस एंड दैट। अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं, अल्लाह ने जिसको हलाल कह खा लो, जिसको हराम कह ना खाओ। बाकी रह गई बात कि क्या नहीं करना। अब यहां तक वो बात थी कि जिन बातों से रोका गया उससे रुक जाओ, जिन बातों के करने का हुक्म दिया उसको कर लो, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अच्छा जी ठीक है, मान लिया ये सब तो ठीक है, तो अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो अल्लाह ने भी रोका है जिनसे रुकने को। बात समझे? अभी तक जो बात हुई है ना, ये सोसाइटी के प्रेशर की थी कि सोसाइटी के प्रेशर में आकर हराम को हलाल और हलाल को हराम ना करो। तो अब एक अगला सवाल जिसका जवाब आयत 120 और उससे आगे आ रहा है कि अल्लाह ने क्या हराम किया ना हो, और छोड़ दो हर तरह के गुनाह को, वो खुला हो या छुपा हो, ये छोड़ो ना, बहीरा को छोड़ो ना, साहिबा को छोड़ो ना, हाम को छोड़ो। ये चीजें खा पी सकते हो, लेकिन जाहिरी और बातनी गुनाहों को छोड़ दो। इन्नल्लज़ीना यक्सिबूनल इस्म, जो लोग कमाते हैं गुनाह को, सयुज़ज़ौना बिमा कानू यक्तरिफून, इन्हें जल्द ही बदला मिलेगा इसका जो वो जमा कर रहे हैं। क्लियर कट बता दिया कि जाहिरी और बातनी गुनाहों को छोड़ दो। अब देखिए एक सिंपल सी बात समझिए, एक जानवर है, जैसे मिसाल ले लेते हैं ऊंट। अब ऊंट का गोश्त, गोश्त ही है ना, आप उस ऊंट को किसी कब्र पे छोड़ा है, उस गोश्त के अंदर केमिकली तो कोई चेंज नहीं आई, एक कब कुछ निकलेगा, खून गोश्त पानी जो कुछ है, और किसी के किसाब के स्लॉटर हाउस में काटे तो सेम कटेगा ना। अल्लाह सुबहाना ताला एक चीज जो बिल्कुल अपने असल से ठीक है, उसको किसी बुजुर्ग का या किसी कब्र के नाम पर जाके कटवाने की बजाय उसको उसकी असल शक्ल पे रखना चाहते हैं। सिंपल सी बात है, तुम इन चीजों में ना पड़ो। ये ऐसी लग रहा है जैसे मुझे थोड़ी सी फीलिंग जो आ रही है इस आयत को पढ़ते हुए कि अल्लाह कह रहा है कि मेरे निजाम में खलल ना डालो। मैंने कह दिया ना गाय हलाल है तो खाओ, बस खत्म। कैसे काटो ये तरीका भी तुम्हें बता दिया। अब तुमको ये बाबा जी की कब्र की, ये फुलां की, इन चीजों में ना पड़ो। छोड़ो क्या? जाहरी और बातनी गुनाह छोड़ो। होता क्या है कि जहां शिर्क होता है ना, खासतौर पर ये जो जिस सिनेरियो में ये बातें जा रही हैं, जब लोग कुछ हलाल चीजें छोड़ देते हैं ना, तो ला मोहल्ला कुछ कब्रों पे और ऐसी जगहों पे जहां ये शिर्क होता है, वहां जिना और फहाशी आम होती है, बदकारी आम होती है। ये हिस्ट्री के वाकयात में से भी जो मैं पढ़ रही थी उसमें भी एक पढ़ा के हर साल एक दफा यानी एक कंवारी लड़की को अपने उस दौर के जो उनके बुत थे उनके नाम पे दरियाए नील में वो डालते थे। और इसी तरह से कब्र प्रस्ती जो रिलीजन होते हैं उसमें आपने पिछले दो सबक पहले सुन रहे थे आप लोग भी कि अपने किसी भी बुत या बुजुर्ग के नाम पर एक दफा जरूर एक औरत अपनी बकारत को जाहिर करे। ये है जाहिर अल इस्मी व बातिन हो। और आज भी आप जाके देखे तो अंदर खाते यहां बहुत गंदगी है। जहां आप नंस बनते हुए लोगों को देखते हैं कि ये शादी नहीं करेंगे, वहां अंदर खाते बहुत कुछ है। क्योंकि जब वो फितरत का रास्ता बंद करेंगे, अब आपको भूख नहीं लगी, आप खाना नहीं खाएंगे, तो आप जरूर अल्टम बल्टम के लिए दूसरी तरफ जाता है। इस्लाम सीधा सीधा रखता है ताकि तुम्हारी जिंदगी में खराबी ना हो। आयत 121 में पिछले उसी मौजू को कंटिन्यू किया गया, वला ताकुलु मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि, वला ताकुलु मिम्मा लम यज़कुर इस्मुल्लाहि अलैहि, और मत खाओ उसमें से जिस पर अल्लाह का नाम ना लिया गया हो, क्योंकि वा इन्नहु लफिस्क, यकीनन इसका खाना गुनाह है। अब ये कौन सा खाना है? ये जवाब मिल गया आपको? रेगुलर स्टोर्स का खाना, जिस पे अल्लाह का नाम नहीं लिया गया उसको भी नहीं खाना। लोग क्या कहते हैं आज के दौर में, जब लोगों का दिल चाहता है कैंटकी चिकन खाने को और हल जैसे आम रेगुलर स्टोर से चिकन खाने को, तो वो यही कहते हैं कि देखो इन्होंने तो किसी बुत के नाम पे नहीं जिबा किया, बस स्लॉटर हाउस में जाके गर्दने काट दी। तो अल्लाह कह रहे हैं नंबर एक उसका भी नहीं खाना जो गैर अल्लाह का नाम है, और उसका भी नहीं खाना जिसपे चीजें हैं। आप लिख लें, एक वो जानवर है जिसपे अल्लाह का नाम लेकर काटा गया, ठीक है, इस्लामी ज़बीहा, वो तो हर हाल में खा सकते हैं। दूसरा वो जिसको काटते हो किसी बुजुर्ग या किसी कब्र वाले की नाम का काटा, नजर न्याज नहीं कर, वो किस में आ गया? वमा उहिल्ला बिही ली गैरिल्ला, इसको भी नहीं खाना। तीसरा जिसपे किसी का भी नाम नहीं लिया गया उसको भी नहीं खाना, सिंपल सी बात है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐसी चीज को खाओगे तो ये दुरुस्त नहीं होगा। और व इन शयातीन लयूहून इला औलियाइहिम लियुजादिलूकुम, तीन अपने साथियों को वही करते रहते हैं ताकि वो तुमसे झगड़ा करें। व इन अतातुमूहुम इन्नकुम लमुशरिकून, और अगर तुम इनका कहना मानोगे तो तुम भी मुशरिक हो जाओगे। कि जिसके ऊपर अल्लाह किसी का नाम नहीं है, आगे 138 आयत इसी सूरत की आ रही है जिसमें इसके ऊपर मजीद बात होगी, इसलिए हम इसको इधर छोड़ के इस आखिरी हिस्से पे बात कर लेते हैं कि शैतीन अपने दोस्तों के दिलों में वही करते हैं या ख्याल डालते हैं कि वो तुम मुसलमानों से लड़ो झगड़े करो, और अगर तुमने उनकी बातें मान ली तो तुम उन्हीं जैसे हो जाओगे। अब ये क्या है झगड़े? हुज्जतबाजियां। मुशरिकीन मक्का अपने गलत एतकादात की हिमायत में हुज्जतबाजियां करते थे। मसलन कहते देखो जो जानवर अल्लाह ने मारा है खुद मर गया है, उसको तो खाते कोई नहीं, जिसको तुम खुद मारते हो उसको जिबा करके हलाल मान लेते हो। इसी तरह एक और इनकी हुज्जत थी सूद के बारे में, कोई बता सकता है? एक जुमला कुरान ने भी नोट किया ना इनका, जी आयत 275, इन नमल बैयु मिस्लु रिबा। हाँ, सूद तो कारोबार वाला कहते हैं ये अपने गलत अकायद को साबित करने के लिए हुज्जतें देते हैं। अब यहाँ पे बात पूरी हो गई। मुझे ऐसे लगता है कि जो सबक का मेन थीम था ना, उसकी जो बात अल्लाह ने समझानी थी ना, वो हमें समझ आ गई। आ गई है सबको? किसी को कोई बात अनक्लियर तो नहीं है? अब आगे जो आखिरी आयतें हैं जहां से हमने सबक पूरा करना है, ये आयतें दिल पे लेने वाली है। आप कह लें कि आप अकल इस्तेमाल कर चुके हैं, अब अगली आयतों में दिल ले लीजिए। अब अमन का नमैतन, और क्या भला जो शख्स पहले मुर्दा था। लिखिए अपने आप को भी, कुरान से पहले, इस्लाम से पहले। काफिर है तो फिर मुराद है कि इस्लाम कबूल करने से पहले मुर्दगी थी, हम सब मुर्दा थे, हमारी रूहें मुर्दा थी। यही ना हो, फिर हमने इसको जिंदा किया कैसे? एक आपके जिसम में थे, अब दुनिया में आ गए, लेकिन यहाँ मानी कुछ और है। पहले पता ही नहीं था, एक बंदा अल्लाह का बंदा नहीं था, वो अब्दुद दुनिया था, अब्दुद दीनार था। दिरहम और दीनार के थे हम, दुनिया के थे, लोगों को खुश करते थे। हमारी इंसानियत दर हकीकत मुर्दा थी, हम एक एनिमल इंस्टिंक्ट पे जी रहे थे, सोशल एनिमल थे, इंसानों के लिए जीते थे। फिर अल्लाह ने ईमान दिया, फअहयैना हू, ईमान की हिदायत दी, अब एक नई जिंदगी। या आप में से किसी का वो पहला शौरी ईमान है जब आपको तलब पैदा हुई कि आप अल्लाह की किताब सीखें, अल्लाह से प्यार करें। हर एक का अपना वक्त होता है। एक आपका ये सफर हो सकता है कई सालों से शुरू था, तलब थी, आहिस्ता आहिस्ता आप अंदर जागे, पढ़ूं, सीखूं, नमाज ठीक करूं, गलत है हिजाब लो, ये फिर क्या हुआ, बस जिंदा हो गया तो खत्म? नहीं, अगली बात है जो काम की। वजालना लहू नूर यमशी बिही फिन्नास, और हमने इसके लिए एक रोशनी कर दी, अब इसके साथ वो चल रहा है लोगों के बीच में। ये कौन सी बात है? इस किताब से जो मिलता है उसको प्रैक्टिकल लाइफ में लेके जाता है। ये नहीं कि शादियां, मंगनियां, ब्याह और घरदारियां इस रोशनी से बगैर है, कि नहीं वो तो वही करेंगे जो लोग करते हैं। बात समझ रहे? मुर्दगी थी, पता ही नहीं था, ठीक है, अल्लाह ने अपनी हिदायत दे दी। अब इस हिदायत को इस क्लासरूम में नहीं छोड़ा बल्कि यमशी बिही फिन्नास, लोगों में चलना है। ये हाईलाइट करें, यमशी बिही फिन्नास अपने नोट्स में लिखेंगे और खुद से पूछेंगे आयत के इस हिस्से पर मेरा कितना अमल है, क्या मैं इस हिदायत की बात को क्लासरूम में छोड़ देती हूँ, या मस्जिद में सिर्फ ले जाती हूँ, या अपनी कुरान क्लास की साथियों के साथ किसी महफिल में रखती हूँ, या फिर फिन्नास, देखिए अन्नास है, आम लोग। अल्लाह कहते हैं ये सर्कल पूरा होगा। आप इसको इस तरह भी कर सकती हैं, ऐसे कर सकते हैं, आप अपना नाम लिख लें, फिर ऐसे शुरू की कैफियत जब थोड़ी खुदा से दूरी थी, खुदा फरामोशी थी, अल्लाह से दूरी थी, उसको आप लिख लें मैतन, स्टेज वन। फ यही ना हो नंबर टू, जिसपे आपके अंदर एक तड़प पैदा हुई, जैसे उठते हैं तो भूख लगती है ना, तो या यही ना हो हिदायत की तलब है। वजल ना लहू नूरन को थर्ड स्टेप कर लें दायरे में, इसके बाद यमशी बिही फिर नास को अगला नंबर दे दें। खुद से पूछिए क्या मेरा ये सर्कल पूरा है। देखिए अगर सर्कल पूरा है ना, यमशी बिही फिर नास तक आप पहुंच जाती है ना, तो इंशाल्लाह अगले दिन दोबारा फाहे ना हो से आपका सर्कल शुरू हो सकता है। जिस इल्म पर अमल शुरू हो जाता है ना, मजीद इल्म हासिल करने का शौक आ जाता है। आप माने कि ना माने मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बात सच है, बस दफा हमारा क्लास में आना हमारे किसी ऐसे अमल की वजह से नामुमकिन हो जाता है जो हमें नहीं करना होता था। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूंगी, शायद मेरी बात समझ आए, मुझे पता है कि ये जो मैंने अभी कही ये बात आपको समझ नहीं आई। आपने किसी का दिल नुकसान किया हो तो उससे सामना होने से डरते हैं? डरते हैं ना, ऐसे ही है ना, किसी को कोई बात कही हो या हमारी कोई बात खुल गई हो और हमें भी पता, तो हमें खौफ क्या था, अब जब वो बंदा मिलेगा तो क्या कहेंगे, नजरें नहीं मिलाएंगे ना। इसके बरक्स आपने किसी को कोई गिफ्ट भेजा हो या किसी को कोई अच्छी बात कही हो और आपको ये भी पता है कि उसको मिल गई है, उसको पता भी लग गया, उसको पसंद है, अब जब कभी उससे सामना होना होता है तो क्या दिल के जज्बे होते हैं, एक अजीब सी तरंग होती है ना, कि चलते हैं देखते हैं क्या आज वो कहेंगे, कुछ बड़ा अच्छा था, बहुत था। बिल्कुल यही कैफियत इस किताब के साथ हमारी होती है। इस किताब को पढ़ने के दौरान जो बातें इसमें आ रही होती है ना, अगर उसमें अमल के फूल और तोहफे हिदायत के हमारी जिंदगी में चलते हैं ना वीकडेज एंड वीकेंड्स में, तो अगली दफा इस किताब को मिलने को खुद ही मुझे अपनी किताब को मिलना है, मैं उसको बताऊंगी यह किताब मैंने जो थर्सडे को बात पढ़ी थी ना, मैंने संडे को उस पर अमल किया, ए किताब जो मैंने ट्यूसडे को बात पढ़ी थी ना उस किताब, उस पे मुझे फ्राइडे की नाइट को अमल करने का मौका मिल गया। खुशी खुशी आप बताते हैं, और अगर खुदा ना खास्ता मामला दूसरा हो तो आपको नहीं पता होता रीजन क्या मेरे ना आने की, लेट आने की, जाने की, लेकिन वो आप और मैं सामना नहीं कर पाते इस किताब से। किस मुंह से तुझे दिखाऊं अपना मुंह, तो लिहाजा बाज दफा दूसरे नहीं रोकते, हम खुद रुकते हैं। वो सुस्ती में, बीमारी में, टेंशन में, किसी मजबूरी की शक्ल में ढलता है। खुद से पूछे क्या मैं अपनी कमिटमेंट पे कमिटेड हूं, खुद से पूछिए। अब आप मुझसे सुनेंगे तो ये कड़वी बातें, मेरा तो ख्याल है आप रिकॉर्डिंग पे आ जाएं वापस, सीधी सीधी क्लास ले और घर जाएं, लेकिन मैं तो सच बोलूंगी क्योंकि मैं जिंदा हूं, मैं आपके सामने हूं, खुद वही रहती हूँ। आज देखिए कि दो तीन ग्रुप लीडर नहीं थे, अल्लाह करे उनकी इतनी शरई मजबूरी हो कि वो अल्लाह के आगे जवाब दे हो। हमें तो कोई नहीं, हम तो ऑफ कोर्स कहेंगे कि भाई उनकी यकीनन मजबूरी होगी, बस जो मुश्किल है वो ये है कि मेरे अंदर तो कमी नहीं आ रही, कि मैंने इस कमिटमेंट को तो नहीं ड्यूटी ला लिया, नहीं मैं जो मिल गई साथ पा रहे माशाल्लाह। आप देखिए आपको पता भी नहीं चलेगा, 1 महीने 1.5 के अंदर आप 10 पारों पे पहुंच जाएंगे, और जब 10 से ऊपर आप जाएंगे तो फिर देखिएगा आप कैसे उड़ते हैं। लेकिन अपने आप को पूछिए क्या मैं, मेरी ग्रिप लूज तो नहीं हो रही इस कोर्स में, तर्जुमा याद करती हूँ, शौक पहले दिन वाला आखिर दिन तक रखेंगे ना तो अल्लाह के लिए इतनी अल्लाह की तरफ से खुशखबरी है आपके लिए, आप अपना दामन समेट नहीं सकेंगे, अल्लाह आपके दामन में इतना भरेगा। और अगर मेरी तरफ से, आपकी तरफ से, हमारी अपनी चीजों में कमी आई, अल्लाह की भी करेगा जिस तक पहुंचेगा, और सारी जिंदगी चलता रहेगा। ये मैंने और आपने इसको लेना, यमशी बिही फिन नास, अल्लाह कहते तुम्हें पता है कितनी बड़ी रोशनी तुम्हें मिली, ये कोई छोटी बात है, क्या तुम वैसा बनना चाहते थे कि कमम मसलू फिज जुलुमात, क्या वो उस शख्स के बराबर है जो अंधेरों में भटक रहा है, डिप्रेशन के अंधेरे, लोगों की बातों का खौफ, लई सभी खारे जे मिनहा, दो बातें है भी अंधेरों में, टाबक टोइया मारे आप अंधेरा कमरा सोचे, गहरी सी खाई है और कोई उसमें इधर से उधर है, अंधेरे हैं, पता ही नहीं जीना कैसे, मरना कैसे, खुशी कैसे, गम कैसे, बच्चे कैसे पालने, कोई रोशनी तो है ही नहीं, रोशन किताब तो है ही नहीं, ये नूर किताब का तो जिंदगी में नहीं, अच्छा है अंदर, चलो उम्मीद होती है कि निकल जाएगा, टाबक टोइया मार के रास्ता मिला, मिल गया। अल्लाह कहता नहीं, लई सभी खारे जो मिनहा, वो उसमें से निकलने वाला भी कोई नहीं है। सोचें जरा वो जिंदगी, अगर आपकी जिंदगी से ये किताब का नूर छिन जाए, अल्लाह ना करे, पीछे क्या है? आज बता देती हूँ एक लफ्ज में, अंधेरे, जुलुमात, जुलुम नहीं है जमन, एक पे अंधेरा, डिप्रेशन, गिल्ट, कॉन्शियस, कुछ हाथ पल्ले नहीं आता, जाहिर भटक रहे हैं, आज उधर उसकी मदद, उसकी दावत, उसकी शादी, उसका घर, उसके बच्चे, उसकी शॉपिंग, जाहिर आप खुश हैं, लेकिन ये टाबक टोही है, लई सभी खारे जमीना, विशेष सर्कल है ये, कजाली का जोशीन लिल काफिरी नमा कानु या मलून, इसी तरह हमने मुजयन कर दिया इन काफिरों के लिए जो कुछ ये करते हैं। या कौन है काफिर? ये जुलुमाती वाले में लोग हैं, अंधेरों में भटकना है, ये वो कुफर नहीं है जो अल्लाह को नहीं मानता, ये किताब का कुफर है। उसको नहीं पता चलेगा मैं किधर चल पड़ा, और अल्लाह जान छुटी, सांस लूं जरा खुला। आप देखिए एक शख्स जिसे पहले होश नहीं था, कभी इसने बारीक बातों को, फिर अल्लाह ने इसको हिदायत दी। किताब सोचना अंदर से बारीकियां निकलती हैं, हमें सोचना सिखाती हैं, हम तो ऊपर से मोटा मोटा कुरान पढ़ते थे, अब कुरान के नूर से सीना मुनव्वर हुआ, अब नूर में आगे बढ़ा, पढ़ता ही गया। हजरत उमर को सोचिए, 6 साल लगे थे हजरत उमर को हक पे आने में, तवज्जो हो गई भी थी, 6 साल बाद ईमान लाए। हजरत हमजा 6 साल बाद ईमान लाए, लेकिन जब पकड़ा कुरान को, मिशले राह बनाया, तो फिर नहीं पलटे। ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई पहले पारे से मिले या छठे या 30वें से मिले, वल्लाही मैं ऐसे लोगों को जानती हूं, बिल्कुल आखिरी पारों पे मिलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो आगे इतना आगे निकल जाते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप में से किसने Day 1 से ये कोर्स ज्वाइन किया और कौन बीच में आए, लेकिन इससे बहुत फर्क पड़ता है कि पकड़ने के बाद अब आपकी आगे इसके साथ कमिटमेंट क्या है। उम्र 6 साल बाद आए, लेकिन ये कभी नहीं हुआ कि आने के बाद कभी इधर भटके तो कभी उधर भटके, फिर चलते रहे, फिर जिंदगी दे दी, जान दे दी। कल पढ़ रही थी हजरत उमर की शहादत का वाक्या, यकीन करें क्या वो लोग थे। मैं तो रोती हूँ सोच के कि अल्लाह हमें क्यों नहीं ऐसे लोग। कहते कि अबू लोलो ने उनको मारा था और वो मौके की तलाश में था कि उमर को कब गाफिल पाऊं, और सिर्फ एक मौका उसको मिला कि एक कैफियत है जिसमें उमर मेरे काबू में आ सकते हैं, और वो नमाज की हालत है, क्योंकि नमाज में उमर को होश नहीं होता। इसके अलावा उमर बड़े चाको चौबंद है, उनको जहर देना कोई मजाक है। वह खंजर हजरत उमर की कमर में घोंपा, सारी जमात थी, क्योंकि जो पीछे नमाज पढ़ने लगे थे वो भी नमाज में मदहोश थे। क्या बात करते हैं, अल्लाह सीना खोल दे तो बंदा फिर अंधेरों में भटके, छोटी छोटी बातों में मरता जाए, इतनी सी बातों में अंधेरों में भटके। ये लोग कभी अल्लाह के तो बराबर नहीं हो सकते। कमा यहां तकाबुल है, काफ मानित कर, तो मैं और आप अपने ऊपर लेके सोचें। बाकी रह गई बात दूसरे लोग क्या करते हैं, तो अल्लाह कहते हैं आयत 123 में, वह कजा लिखा जाल ना फी कुल्ली करियत नकाबिर मुजरिमी हा लियाम गुरु भी हा। दो बातें इसमें, इसी तरह हमने हर बस्ती में बड़े बड़े मुजरिम खड़े किए ताकि वो खूब इसके खिलाफ साजिशें करें। ये भी बात सोचने की है। ये वही बात है जो पीछे आयत 112 में गुजर चुकी है कि शयातीन इन तो जिनको हम खुद ही नबियों की दुश्मनी के लिए मुड़ा बनाता है, दौलत के नशे में चूर, जो दराहटे सरदारियां हक के मुकाबले में खड़े होते हैं, लोगों को सीधे रास्ते से रोकते हैं, इसको बैन कर दो, पर्दा बैन कर दो, निकाब बैन कर दो, दाढ़ी को ये कर दो, वो कर दो, क्यों? ताकि आजमाओ इन सारे हक वालों को और देखो ये कैसे भरते हैं। बात समझिए, कुछ लोगों को अल्लाह खुद मौका देता है, जाओ हक के रास्ते में चलें चलो, ताकि इन खूबसूरत चेहरों जैसे लोगों की सलाहियतें और उभरे। जब कोई ऐसी पिटीशन आती है तो मुसलमान भी हरकत में आ जाते हैं ना, बैन करो, साइन करो, इस पोल को करो आगे, जल्दी करो, ये करो, वो करो, जितने लोगों के वोट की जरूरत आती है ना, ऐसे वक्तों में फिर अल्लाह आप जैसे लोगों का ईमान खोलता है। अल्लाह कहते हैं और मुसलमानों को मारो ताकि ये और सब्र करें। और फिक्र की बात कोई नहीं, वमा यमकुरून इल्ला बि अनफुसिहिम, ये कोई चाल कोई मकर नहीं कर पा, नहीं पाओ पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, इनको नहीं पता कि किसी के लिए कुआं खोद रहे हैं, लेकिन खुद गिरेंगे, सारा बवाल इन पर ही पड़ेगा। बस आप देखिए कि जब हजरत यासिर और हजरत सुमैया को अबू जहल ने मरवाया या उनके ऊपर सख्तियां की, तो अबू जहल को पता था कि इसका बवाल मेरे ऊपर ही पड़ेगा। हमने वो कुआं देखा बदर में कि जिसमें अबू जहल और इनकी लाशें डाली गई, कि अल्लाह के नबी ने उस कुएं के पास खड़े होके जाके कहा था कि सुनाओ तुम्हें मैंने जो कहा था सच नहीं था। तो अल्लाह के नबी से लोगों ने कहा, अल्लाह के नबी आप मुर्दों से बातें कर रहे हैं? कहा खुदा की कसम ये इसी तरह मेरी बात सुन रहे हैं जैसे तुम सुन रहे हो। ये मौजजा था कि अल्लाह ने इन बड़े बड़े मुजरिमों को सुनवाई अपने नबी की बात। तो वह बाल तो पड़ता है, लेकिन बात यह है कि जब आंख खुलती है उस वक्त फिर मौसम चला चुका होता है। जब आंख खुली गुल की तो मौसम खिजां का था। ऐसा और ऐसी बातों के प्रेशर में आ जाए, ऐसे लोग हक का इनकार कैसे करते हैं? आयत 124, और जब इनके पास कोई आयत आती है कुरान की, आपके पास भी आती है, मेरे पास भी आती है, उन लोगों का क्या तर्ज अमल होता है? कालू, कहते हैं लन नोमिना, हम नहीं मानते इस आयत को। कि मैं तो नहीं कहती ये, खुद से पूछें। हाँ एक ही शर्त है मानने की, हत्ता नूता मिसला मा उतिया रसूलुल्लाह, जब तक के हमें भी वो चीज ना दे दी जाए जो अल्लाह के दूसरे रसूलों को दी गई। मौजज़े, कुछ लोग इस तरह के मुनकिर होते हैं, आयत सामने है कुरान की, कहते हैं अभी हमारे लिए नहीं है, हम नहीं मान सकते, पहले हमें भी मौजज़े मिले, जिब्राइल आए, पहाड़ सोने के बने, वो पहले जो असा था यदे रहा था, वो सब कुछ दिखे मिले मिलाए, फिर अहवालमुहैसो रिसालता, तुम्हारा मुंह ऐसा है कि तुम्हारे पास फरिश्ते आए। मूसा और ईसा और मोहम्मद सल्लम के जो फरिश्ते आए, क्या तुम जैसे अबू जहल और ऐसे मुनकरों के पास आए? नहीं नहीं ले और किस तरह ले। इस आयत पे तो बहुत रोना आता है, पता नहीं आपने इसको किधर लिया, लेकिन ये टुकड़ा भी हाईलाइट कर ले, अल्लाहु आलम हैसु यजलु रिसालता। मैं जब बहुत सारे साथियों को अपने इर्द गिर्द दीन की खिदमत करते हुए देखती हूँ ना, तो मुझे ये आयत याद आती है, कहीं दुबले पतले और कहीं कमजोर और कहीं कई किस्म की आजमाइशों में फंसे हुए साथी दिन रात दीन की खिदमत करते हैं, तो मैं ये आयत अपने दिल में कहती हूँ कि अल्लाह को पता है इनके अंदर क्या खैर है कि अल्लाह इस बच्ची और इस लड़की से अपने दीन का काम ले रहा है। ये अल्लाह का प्लान है। हर एक से नहीं लेता अल्लाह दीन का काम, तो जिससे अल्लाह अपने दीन का और अपने दीन के पैगाम का काम लेता है, ये अल्लाह का फैसला है। ऐसे लोगों के मुकाबले पे भी नहीं आना चाहिए। सयुसीबुल्लज़ीना अजरमू सगारुन इंदल्लाह, अनकरीब पहुंचेगी इन मुजरिमों को बहुत ही जिल्लत अल्लाह के हाथ से। वाज़ाबुन शदीदुम बिमा कानू यमकुरून, और सख्त अजाब इनकी चालबाजियों के सबब जो वो कर रहे हैं। बज़ाहर तो देखिए कि अल्लाह के नबी का दौर हो या आज का दौर हो, बातिल परस्त बहुत फलते फूलते दिखते हैं ना। अबू लहब शोलों का बाप, कितनी दौलत थी उसके पास। अब्दुल्ला बिन उबई का चकला था, लौंडियों को नचाता खिलाता पिलाता। अबू जहल लौंडियों को साथ लेकर बदर की तरफ गया, खाएंगे पिएंगे शराब कबाब, लेकिन अल्लाह कहते हैं अनकरीब गिराया जाना सगार था ना, और क्यामत तक का अज़ाब शदीद है। अल्लाह हमें ऐसे लोगों में ना करे। आखिरी आयते हैं जिस पे अब मैं और आप अपना दिल खोल लें, आयत 125, फमन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिलइस्लाम, तो अल्लाह जिस किसी को हिदायत से नवाजना चाहता है, इसके सीने को इस्लाम के लिए खोल देता है। शरह सदर, सीना इस्लाम के लिए खुले, ये क्या होता है शरह सदर? अब देखिए, ये वो नेमत है जो अल्लाह ने अपने नबी को भी दी थी। पूरी सूरत है सूरह शरह, अलम नशरह लक सदरक, के ए नबी के हमने आपका सीना खोल नहीं दिया। सीने का खुलना क्या होता है, इसकी चंद अलामतें नोट कर लें। पीछे भी गुजरा है सुम्मा कसद कुलूब में, लेकिन चंद बातें हदीस से मिलती हैं कि जब सीना किसी का खुल जाए तो क्या है। नंबर एक, अल इनाबतु इला दारुल खुलूद, हमेशगी के घर की तरफ तवज्जो लग जाती है हर वक्त। इनाबत कहते हैं रुजू को, ध्यान जाना, जैसे हम में से हर एक का ध्यान जाता रहता है ना, पाकिस्तान जाना है तो पाकिस्तान की तरफ ध्यान होगा। इस तरह जिसका सीना खुलता है ना, अल्लाह ताला उसको हर वक्त आखरत की फिक्र दिला देता है। हाय वहां क्या होगा, वहां का सोफा, वहां की कुर्सी, वहां का मेज, वहां क्या, वहां क्या, ये सब कुछ होता है। दूसरी अलामत, वतताजाफा अन बैतिल गुरूर, धोखे के घर से तजावुज करना, यानी दुनिया धोखा है, इसके धोखे से बंदा अपने आप को दूर कर लेता है। यानी दुनिया की कोई खुशी मिले हो, कोई मिल गया अच्छा अल्लाह हिसाब ना हो, अच्छा अल्लाह ये मिल गई है, नहीं मिली खैर है, यानी इस दुनिया के धोखे से बंदा निकलता है। और तीसरी अलामत, वल इस्तेदादु मौत कबल अल मौत, मौत से पहले मौत की तैयारी। अल्लाह कहता है कि सीना खुलेगा तो इस दुनिया से आखरत तुम्हें ज्यादा खूबसूरत लगेगी, और तुम हर वक्त उसकी फिक्र करोगे। खुद से पूछिए, हमारी हमारे सीने खुले? में मेरा सीना खुला? देखिए, ये दुनिया, ये घर आराम की जगह है, लग्जरी की जगह नहीं है। हम इसे हर एक अपनी दिलचस्पियों का जायजा ले, हर वक्त अपग्रेड ही तो नहीं करती रहती जिंदगी को, अब ये कमरा, अब वो कमरा, अब ये घर, अब वो, पैसे पे पैसा, माल पे माल, दौलत पे दौलत। और आप देखिए कि जिसको हिदायत मिले अंधेरों पे जाएगा ना, टटोल के चलेगा, ठोकरे खाएगा, तो उसको झाड़ियां मिलेंगी वो उसको भी ले लेगा, कांटे मिलेंगे वो भी ले लेगा, उसको फूलों का पता ही नहीं है। इसीलिए शरह सदर नहीं होता ना जब, तो बंदा फिर दुनिया की बेकार चीजों पे पड़ता है, छोटी छोटी चीज उसकी जरूरत है। और जब सीना खुलता कहता क्या हुआ, एक हफ्ता ही है ना, फिर क्या, गुजारा कर लूंगी इसके बगैर। क्या हुआ अगर एक महीने से ये चीज नहीं है, फिर क्या हुआ, आ जाएगी, है तो है, नहीं है तो ना। से इंसान मजबूर नहीं होता, और जब सीना खुलता है ना तो बंदे को हकीकत में बातें कम करनी आती हैं। अपने लफ्जों को देखा करें, कितना बोलती हूँ, सोचना ज्यादा अच्छा लगता है, बोलने से ज्यादा सुनना अच्छा लगता है, गौर व फिक्र इंसान के की गजा बन जाती है। इस तरह से एक बंदा अपने आप को फिर उसमें ले जाता है कि वो अपने आप को देखो, अगर दुनिया से कुछ नुकसान मिल जाए तो उस पर गम नहीं खाता। आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, इसके बारे में मजीद बात होगी, लेकिन अब दूसरा किरदार भी अल्लाह ताला सामने रखते हैं हमारे, उसको भी देख लीजिए। ये कौन सा था जिसका शरह सदर हो गया, जिसका सीना खुल गया, उसको तो अल्लाह ताला ने नेमत दे दी, लेकिन एक दूसरा शख्स जो अपने आप को इस दुनिया का बंदा बना लेता है, उसका हाल क्या है, अंधेरों में धक्के खाता है। और वो कैसे धक्के हैं उसके, अल्लाह अकबर, वमें युरिद अन युदिल्लहु, और जिसको भटका दे, या जलसदरहु दय्यकन, उसका सीना तंग कर देता है, या दय्यकन पे कौमा लगा ले, ये पहला स्टेप होता है। सबसे पहले सीना तंग होता है, घुटन पैदा होता है, पे प्रेशर बढ़ता है, फिर अगला स्टेप क्या होता है, हैराजन तंग होता है, आर्टरीज सुकड़ने लगती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। तीसरा दर्जा क्या है, कान्नम यसअदु फिस्समा, नेकी करना, अल्लाह के हुक्म पे चलना, उसको ऐसे लगता है जैसे पहाड़ पे चढ़ना, आसमान की तरफ जाना, यानी छोटी सी नेकी उसको इतनी मुश्किल लगती है गोया के किसी ने उसको आसमान की तरफ चढ़ने का हुक्म दे दिया। चढ़ाई सबको मुश्किल लगती है। कज़ालिक यजलुल्लाहु रिज्स, इसी तरह अल्लाह ताला हक से फरार और इस नापाकी की वजह से उनकी कम नेकी की उसकी नापाकी को बढ़ाता है, अलल्लज़ीना ला युमिनून, उन लोगों पर जो ईमान नहीं लाते। बिल्कुल शरह सदर का ऑपोजिट, दिल खुला, आर्टरीज खुली हैं, नेकी के बड़े बड़े काम छोटे छोटे लगते हैं, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, आई कैन डू, आई कैन डू, ये एक बातनी बसीरत है। अपने से एक छोटा सा टेस्ट कर ले, सिंपल सा, मेरा सीना खुला हुआ है कि बंद है, एक सिंपल, इतना सा, एक उंगली जितना टेस्ट है इसका, एक स्ट्रिप, नेकी का काम मुश्किल लगता है कि आसान, बस। और खास तौर पे वो नेकी जो दूसरे ना कर रहे हो, खास तौर पे वो नेकी जिसके लिए चॉइस हो, फर्ज ना हो। ऑप्शनल नेकियां कैसी लगती हैं, नफली नेकियां कैसी लगती हैं, बस ये है शरह सदर। देखिए जबरदस्ती तो सब बुला लेते हैं, जबरदस्ती तो बिठा लेते हैं, जबरदस्ती तो पहना ही लेते हैं चीजें, असल सीना कब खुलता है, जब बंदा दी बेस्ट के लिए तैयार हो। और हर क्लास में ऐसे चंद स्टूडेंट जरूर होते हैं, हर मामले में, क्योंकि मुझे किसी चीज में पीछे नहीं आना। और ऑपोजिट पे आप देख लीजिए तो छोटी छोटी नेकी मुश्किल, ऊंचाई पे चढ़ते हुए सांस फूलता है ना, लगता है दिल ही धड़कना लगा और शायद दिल का दौरा ही पड़ जाए। इसी तरह हक के रास्ते पे जरा सी अपोजिशन आई, ना जी ना, हमसे बातें नहीं सुनी जाती, लोग क्या कहेंगे, मेरा दिल करता है झंझोड़ झंझोड़ के लोगों से पूछूं, इन मट्टी के पुतलों से डर के अल्लाह के हुक्मों को तोड़ते हो और अपने बच्चों को मुश्किल में डालते हो। कज़ालिक यजलुल्लाहु रिज्स अलल्लज़ीना ला युमिनून, ये नतीजे का आखिरी मरहला है, नापाकी मुसल्लत होती है ईमान न लाने वालों पे। अल्लाह हम सबको इससे बचाए। आयत 126, वहाज़ा सिरातु रब्बिका मुस्तकीमा, और ये है तेरे रब का रास्ता सीधा। कौन सा, अपने सामने रखी हुई किताब को हाथ लगा کے کہیں یہ سبیل اللہ تلی قومی یذکرون قد فصلنا الآیات لی قومی یذکرون. اور ہم نے اپنی آیات خوب تفصیل سے بیان کر دی ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہیں. یہ کس کی بات ہے؟ یہ آپ کی بات ہے. انشاءاللہ آپ ہیں لی قومی یذکرون جو اپنے سینے کھول کے اس وقت بیٹھے ہوئے اس کتاب کے آگے چلنا چاہتے ہیں سیدھے راستے پہ. اللہ کہتے ہیں آؤ میں تمہیں بلاتا ہوں. یہ اب آپ سب کا مستقبل ہے انشاءاللہ. آیت 127 میں لہم دار السلام, ان کے لیے سلامتی والا گھر ہے, ٹینشن فری زون. کیا یہ صرف جنت میں ہے؟ نہیں, اس دنیا میں بھی ملے گا. یہ وعدہ ہے اللہ کا آپ سے. آج اگر گھروں میں کوئی الٹ پلٹ چل بھی رہا ہے نا, چند سال جما کے رکھے اپنے آپ کو, جمے. شرط یہ ہے نہیں, پیچھے نہیں ہونا, آگے جانا ہے اب ان کے رب کے پاس. کیوں بھائی یہ کیوں مل گیا؟ سارے جھگڑے ختم, لڑائیاں ختم. جی اس لیے کہ وہ ہوا ولی جو ہم, وہ ان کا دوست ہے. بیما کانو یا ملون, کیوں بنا دوست اللہ آپ کا؟ ان کاموں کی بدلے جو آپ نے کیے. کون سے کاموں کے بعد اللہ آپ کا دوست بنے گا؟ استقامت فی الدین, فارم جم جانا, یہ جنت کا بھی نام ہے. اور آپ اپنے گھر کا بھی رکھ لیں. شرط یہ کہ محنت, قربانی, مشقت اور ایثار, یہ چار چیزیں لکھ لیں. محنت, قربانی, مشقت, ایثار. ایثار سے مراد ہے کہ دوسرے کو اپنے اوپر پریفر کرنا. یہ ہیں وہ عمل جن کے بعد اللہ آپ کا دوست بن. ہم پانا چاہتے ہیں اللہ آپ سب کو دے دے, سب کو جنت دار السلام میں اللہ داخل کر دے. آپ کو تک کہ حرم کے دروازوں میں سے بھی ایک دروازے کا نام باب السلام ہے, دار السلام. کیا خوبصورت نام ہے. تھوڑی سی دین کے لیے قربانی اور اتنی ابدی راحت. حیرت کی بات ہے نا, کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ نیکی تو بندہ 40 سال, 50, 60, 70 سال کرتا ہے, تو جنت کیوں ہے ہم فیخا خالدون؟ آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ یہ علماء کے اندر ایک بڑی بحث ہے کہ بھئی زندگی میں 70 سال زیادہ سے زیادہ نیکی کی آپ نے اور آپ فوت ہو گئے, تو بڑا تھا اللہ 70 سال دار السلام دے دے اور پھر کہ چھٹی کرو, پھر کیوں ہے ہم فیخا خالدون؟ جی آپ بتائیے. نتیجے میں اللہ کے فرما بردار بنتے ہیں. تو یہ تھا آج کا سبق, چند لوگ شیئر کریں کیا سیکھا آپ نے. جی ادھر سے کوئی. جی ہما کیا سیکھا آپ نے؟ جی آنٹی نورین آپ بھی ادھر آئیے, آئیے ادھر. جی تھوڑا سا اونچی بولے. آپ کی آواز کا عدل کیا ہے کہ سب کو آواز آئے؟ جیسے بچوں کے ساتھ چیختے نا ویسے بولیں. جی شرح صدر کر دے اللہ تعالیٰ. جی ان کو میں نے اس لیے بلایا کہ آج یہ بہت دن کے بعد کلاس میں آئے, اور میرا گمان ہے کہ عمرے پہ ہے کہ اور نہیں گئے تھے. شیئر کی آن لائن پہ بھی ٹیکسٹ کھول دیں.
مجھے آن کے آج بہت اچھا لگا. میں ویسے وہاں گئی تھی تو پھر بھی مجھے کلاس بہت یاد آتی رہی. میں نے بہت دعائیں کی کلاس کے لیے, اور وہاں جا کے مجھے یہ فائدہ ہوا کلاس کا کہ مجھے سمجھ آنے لگی, کافی مجھے سمجھ آنے لگی کہ میں لگتی نہیں ہوں کہ میں بتا سکوں, مگر وہ جو امام صاحب پڑھتے تھے تو مجھے آدھا تو سمجھ آ ہی جاتا تھا, اور میرے آنسو بھی گرتے تھے کہ یا اللہ شکر الحمدللہ کہ میں جس مقصد کے لیے اس کلاس کو جوائن کیا اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے قرآن کی سمجھ دے دے کہ میں جاؤں اور مجھے پتا چلے जन्नत और दोजख, मेरी तो अब जिंदगी मतलब कोई पता नहीं ना, आखरत मैंने, मेरी आखरत मुझे ऐसे लगता है जैसे बन रही है। मैं बड़े सुकून में, जैसे अल्लाह का कुर्ब है, नूर है, मैं मुझे इतनी खुशी हुई मदीना पाक जाके भी और अल्लाह के घर में जाके भी, इतनी खुशी हुई कि अल्लाह शुक्रे, मैं किताब इलाही से जुड़ गई हूँ, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ गई हूँ, और मेरी मुझे इतना सुकून मिला इस दफा जाके, मेरा दिल ही नहीं कर रहा था आने को। और फिर मुझे क्लास भी इतनी याद आ गई थी कि मुझे थकावट काफी हुई हुई थी कल से, मतलब आपको पता ही है कि आप भी गए हैं, मेरी और आपकी उम्र में फर्क भी है। और फिर भी मैंने सोचा, जब आपका फोन आया तो मैंने सोचा नहीं नोरीन, अपने जाना है, सीखना है, मैंने नहीं छोड़ना, मरते दम तक मैंने कुरान को नहीं छोड़ना। मुझे इतना अच्छा लगता है जाके, जिस मकसद के लिए मैंने शुरू किया वो मेरा मकसद पूरा होता जा रहा है। तो मैं कहती हूँ इस तरह मैं जुड़ी रहूँ, मरते दम तक अल्लाह मेरे से ना छुड़ाना, मैंने यही दुआएं की हैं। और
Hi,
वाकई
I'm
इंसान मैं
David.
कहती हूँ
Welcome to my site.
कि
Here, I'll
मैं
reveal
कोई
for free a trick to make lots of money on the internet. It's not a scam and it really works.
मुझे समझ आने लगी है कि वो क्या कह रहे हैं, हम कहाँ खड़े हैं, कुरान हमें क्या पैगाम दे रहा है, कुरान क्या कह रहा है, सुन्नत रसूल पे जब हम चलते हैं तो उसके क्या फायदे हैं। मुझे इतनी खुशी मिली कि मैंने आपको इतनी दुआएं उस वक्त दी कि अल्लाह शुक्र है मैं इससे जुड़ गई हूँ, मुझे काबिल समझा, और मैं नहीं गई पाकिस्तान और मैं जुड़ गई, तो मुझे कितने फायदे हुए हैं सच, मुझे कोई थक्कर नहीं हुई। और आप यकीन करें कि पिछले उम्र में मैंने व्हील चेयर पे सही की थी और इस उम्र में मैंने खुद चल के की सही, इतना मुझे ताकत मतलब इसमें मिली और इतनी खुशियां मिली कि मुझे कोई थक्कर नहीं हुई। मैं सच 3 3 दिन नहीं उठ सकती थी, और मैं आज मतलब मैंने, मेरे मियाँ ने कहा कि, मेरे शौहर ने कहा कि उठें आप चलें, जाएं आप क्लास में, क्योंकि आपने हरम में कहा था कि मैं तो मंडे को क्लास में जाऊंगी, तो क्यों नहीं जा रही। मैंने कहा हाँ अच्छा, मुझे आप छोड़ आए मैं चली जाती हूँ। तो मैंने फटोफट अपना बैग तो मेरा बना ही हुआ था, और मैंने नाश्ता थोड़ा सा किया और मैं भागी, मैंने कोई ये सुनूंगी कल से फिर अपना
कोई
ग्रेस
बात नहीं,
आप
बहुत
मतलब
सारे आप जैसे।
जी। मुझे वैसे सबको मैं कहती हूँ कि ये अल्लाह की जो किताब है सच, इसमें बहुत चीजें हैं, यही हमारे लिए सब कुछ है और कुछ नहीं है, और इसे कभी ना टूटेगा। मैंने सलाम ही नहीं किया। सलाम। हाँ मैंने सारी क्लास के लिए मैंने कहा अल्लाह अपने और अपने नबी के घर सबको बुलाना और अमल करने की तौफीक देना। अब जो सीख रहे हैं इस पे अमल करें, जो मैं चाहती थी ना मुझे वो मिला है और आपको भी मिलेगा।
चलिए, किसी को कुछ कहना? इंशाल्लाह यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ऑनलाइन पे भी टेक्स्ट खोलते हैं और आप लोग शेयरिंग कर सकते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, वो वाला चेंज किया आप लोगों ने, कुछ बताना है इनको कि नहीं? आप इन सबसे पूछ लेते हैं, असल में जो आप लोगों ने कितने लोगों को दावत दी मंडे के, थर्सडे की जो बात हुई थी उस दिन, भूल गए होंगे? थर्सडे की दावत दे दी है सबको, क्योंकि एक चॉइस जो बन रही थी कि मंडे थर्सडे की जगह मंडे को भी कर सकते हैं, लेकिन आप में से स्टूडेंट थर्सडे की दे चुके हैं तो भी ठीक है। वही जो प्रोग्राम करना था आप लोगों के साथ इसी सूरत के बारे में, सूरत तो असल में सच्ची बात एक बहाना है, ये कोई रस्म या कोई फैशन नहीं है कि हम सूरतों का करें, सिर्फ साथियों को मिलाने का एक मौका होता है ना। तो थर्सडे अगर आप लोग ऑलरेडी कह चुके हैं तो फिर वही ठीक है, नहीं तो चॉइस है आपके पास कि हम सूरत अलाफ मंडे को शुरू करेंगे, तो मंडे को को भी बुला सकते हैं ताकि सूरज ठीक है वो हाथ खड़ा करें, जरा खुल के हाथ खड़ा किया करें, ठीक है। अब अगर आपको मंडे में भी कोई त्रास नहीं तो आप फिर भी आप हाथ खड़ा करते, मंडे में कितने लोग कहते हैं कि मंडे को हो जाए, तो मुझे तो मंडे वाले बहुत ज्यादा लग रहे हैं है? फिर जो भी एंड पे इरम अनाउंस कर देंगी, ठीक है। आप लोग ब्रेक में जो भी फीडबैक देना चाहें, तो ऑनलाइन वालों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इनको तो कुछ खाना पीना नहीं मिलना, इन्होंने तो आना ही है। बहरहाल मैं तो कहती हूँ हर दिन ही खास होता है, तो इंशाल्लाह ताला जो भी होगा फाइनल उसको कर लेंगे। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
अल्हम्दुलिल्लाह बहुत थॉट प्रोवोकिंग तफसीर आज का लेसन हमारे लिए बहुत ही अमल वाली बातें थी और उम्मीद है हम सब ने अच्छी तरह इसको सबको एब्जॉर्ब किया होगा इंशाल्लाह। क्या फीलिंग्स है आप सब लोगों की, थोड़ा सा लिखें आप भी, थोड़ी सी शेयरिंग, सम स्टूडेंट्स ने अमल की बातें लिखी हैं, आप भी अभी भी लिखें, क्या फीलिंग्स हैं आप सबकी, खुशी हो रही है ना। अल्हम्दुलिल्लाह सुनी जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताजा जी हैंड्रेस जी जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर शीन अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ठीक है जज़ाकल्लाह खैर उस्ताद जी, उन्होंने मिस्टेक, मैं कैरी ऑन करती हूँ इंशाल्लाह। ठीक है देखिए हमने सिस्टर नोरीन भी कह सकते हैं आंटी नोरीन की शेयरिंग सुनी अल्हम्दुलिल्लाह। देखें कितना डिफरेंट होता है सूरत हाल जब कुरान के साथ कनेक्शन हो, और जैसे हमने उस्ताजा जी का प्रोग्राम फ्राइडे भी सुना और पहले भी उनकी शेयरिंग में कि उम्रे पे जब गए हैं देखें वो भी स्पिरिट जर्नी है, सजमी हो रहा है हमारे कामों में, ऐसे ही नहीं है सब ऐसे ही फील करते हैं कि आपकी हर चीज पे प्रेफरेंसेस प्रायोरिटीज चेंज हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। और आज के लेसन के बाद देखिए हमारे लिए ऐसे है जैसे एकदम हमने इतना फासला तय कर लिया कि बहुत हमने आज इंटरेस्टिंग इम्प्रूव मतलब ऐसी आयाज आई हैं कि जो अभी भी अगर आप नहीं चेंज हुए और आठवां पारा शुरू है तो अल्लाह ताला हमें शेक अप कॉल दे रहा है, वेक अप, जॉल्ट हो रही है हमारी, हम जॉल्ट हो रहे हैं हमारी रूह को कि लोग चेंज इफ यू नॉट ऑलरेडी चेंज। ठीक है इंशाल्लाह अब हम अपने ब्रेक की तरफ चलते हैं, लेकिन वही कि इन बातों को भूलना नहीं, रिफ्लेक्शन करते रहना, ब्रेक करें, सलाह पढ़ें जी प्लीज लिखते हैं मखल 20 मिनट्स का ब्रेक शायद इंशाल्लाह ठीक रहेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن
أنت لك الحق
ووعدك الحق
وقولك الحق
وقولك الحق
ولقاؤك حق
ولقاؤك حق
والجنة حق
والجنة حق
والنار حق
والنار حق
والساعة حق
والساعة حق
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا
وعليك توكلنا
وعليك توكلنا
وإليك أنبنا
وإليك أنبنا
وبك خاصمنا
وبك خاصمنا
وإليك حاكمنا
وإليك حاكمنا
فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا
فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا
وما أسررنا وما أعلنا